अब आइए एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु, हम लोग फिर से इस सेवकाई के लिए जमा हो रहे हैं और हम समय के लिए सोचते हैं कि आरंभ के दिनों में जब वे सब शीलों में प्रभु की आशीषों के लिए आया करते थे और अब आज रात्रि हम यहाँ आपके वचन को सुनने के लिए जमा हुए हैं और जैसा कि हम वचन के इस निश्चित भाग का अध्ययन कर रहे हैं कि मेमना ही केवल एक था जो मोहरों को खोल या तोड़ सकता था और हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि जबकि हम इस महान छठवीं मोहर पर विचार कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि मेमना आज रात्रि इसे हमारे लिए खोलेगा कि हम यहाँ इसे समझने के लिए हैं। और जब पृथ्वी पर और स्वर्ग में कोई भी मनुष्य योग्य नहीं था, केवल मेमना ही योग्य मिला था, इसलिए होने पाए वो सर्व योग्य वो आए और मोहर को आज रात्रि हमारे लिए खोले ताकि हम पर्दे के पीछे बीते हुए समय को देख सकें। ये हमारी सहायता करेगा। पिता, हम ये विश्वास करते हैं ये महान अंधकार पाप से भरा दिन जिसमें हम रह रहे हैं हमारी सहायता करेगा और हमें हिम्मत देगा। अब हम विश्वास करते हैं कि हमने आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाया है। हम अपने आप को वचन के साथ आपको समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप बैठ सकते हैं। शुभ संध्या मित्रों, आज रात्रि यहाँ होना सौभाग्य है कि प्रभु की सेवकाई में हूँ। मैं थोड़ी देर से हूँ, मैं बस गया। एक आपातकालीन एक मनुष्य जो मर रहा था, इस कलीसिया का सदस्य, उसकी माँ या यहाँ आए थे और उन्होंने कहा लड़का तभी मर रहा था, इसलिए मैं उस मनुष्य को देखने चला गया। केवल एक छाया मनुष्य की चरपाई पर पड़ी हुई थी। एक मेरी आयु का व्यक्ति मर रहा था और एक क्षण के समय में मैंने देखा एक मनुष्य अपने पैरों पर उठ खड़ा हो गया और प्रभु की महिमा करने लगा। और इसलिए परमेश्वर, यदि हम अपने पापों का अंगीकार करना चाहेंगे और जो सही है वो करें, अनुग्रह मांगे, उसे पुकारें, परमेश्वर इच्छा कर रहा है और हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हमें प्रदान करे। और अब मैं जानता हूँ कि यहाँ आज रात्रि गर्मी है और ये नहीं, मेरा अनुमान है कि कुल मिलाकर गर्मी बंद हो गई है। और मैंने बीती रात्रि या आज रात्रि ध्यान दिया कि ये आज कमरे में मेरा सातवां दिन था बिना रोशनी के, बस बिजली की रोशनी। देखिए, अध्ययन कर रहा हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन मोहरों को खोले। और वहाँ बहुत से लोग थे जिन्होंने लिखा उस झुंड में से प्रश्नों को या बीती रात्रि प्रश्न किया, जो कि ज्यादा या कम नहीं थे, न कि इतने जैसे कि प्रश्न थे। ये चंगाई सभा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो भी है और एक दिन रुकना चाहते थे कि सोमवार में चंगाई सभा हो जाए। इसलिए मैं चाहूंगा, हो सके मैं वास्तव में कर सकता हूँ, यदि इन लोगों की इच्छा है कि वे करेंगे, आप इस पर विचार कर सकते हैं, मुझे बता दें। परंतु यदि आप बस रुकना चाहते हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना, क्योंकि मैंने इस समय को पूरी रीति से इन मोहरों के लिए ठहराया है और अपने आप को मोहरों के लिए अलग किया है, इसलिए आप इस पर विचार कर सकते हैं और इस पर प्रार्थना करें और फिर मुझे बताएं और मैं करूंगा। यदि प्रभु चाहेगा मैं सकता हूँ। मेरी अगली नियोजित भेंट एल्बक यूरेक में है, न्यू मेक्सिको, और फिर वो कुछ दिनों की होगी। फिर भी मुझे किसी कार्य से घर जाना है, एरिजोना में अगली बेदारी सभा को नियोजित करना है, और इसलिए तब यदि ये प्रभु की इच्छा रही आप इसके लिए प्रार्थना करें, मैं भी वही करूँगा, तब हम इसे थोड़ा और बाद में जान पाएंगे। और मैंने अभी पता किया, मैं देखता हूँ आप बीमारियों के विषय में बातें कर रहे हैं, यहाँ से आता है। देखिए, मैं इस महिला को यहाँ बैठे देखता हूँ, यदि कोई चीज इसकी सहायता ना करे तो ये यहाँ रहने नहीं जा रही है, बस थोड़ी देर और। इसलिए तब देखिए, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर करेगा। इसी चीज के लिए आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आते हैं, इसलिए देखिए, पवित्र आत्मा सारी बातें जानता है, आप देखिए, इसलिए वो। परंतु देखिए, मैंने कोशिश की है इस समय को इन मोहरों के लिए ठहराऊं, क्योंकि हम इसी के लिए यहाँ बैठे हैं, आप देखिए। परंतु यदि वहाँ जो भी है, यहाँ कितने लोग बीमार हैं जो प्रार्थना करवाने के लिए आए हैं, आपके हाथों को देखें, चारों तरफ हर जगह, ओह प्रभु। अच्छा, कितना ये सोचेंगे कि ये सही रहेगा कि प्रभु की इच्छा है कि रुक कर और ये लें, सोमवार रात्रि को लें, इस बीमार के लिए प्रार्थना करें और सोमवार रात्रि एक चंगाई सभा। क्या आप ये करना चाहेंगे? क्या आप ये कर सकते हैं? अच्छा, प्रभु चाहेगा तो हम ये करेंगे, समझे? हम बीमारों के लिए प्रार्थना सभा करेंगे सोमवार रात्रि को, या सोमवार रात्रि बीमारों के लिए प्रार्थना। मैं आशा करता हूं कि ये उस झुंड के लिए रुकावट नहीं करता जिसके लिए मैं वापस जा रहा हूं, वापस एरिजोना जा रहा हूं। भाई नॉर्मन यहां कहीं पर हैं। भाई नॉर्मन, क्या ये आपकी योजना में रुकावट डाल रहा है? भाई फ्रेड और आप ही, आप बाकी लोग यहां ठीक है? देखिए, ये ठीक है, ठीक है ये। तब प्रभु चाहेगा सोमवार रात्रि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, कुल मिलाकर उनके लिए एक अलग रात्रि, बस बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये मोहरों के लिए नहीं होगी, यदि प्रभु इन मोहरों को खोल देगा तब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं सोमवार रात्रि। अब ओ, मैं वास्तव में इसमें आनंद ले रहा हूँ, इनकी अधीनता में जबरदस्त प्रभु की सेवकाई। क्या आपने आनंद लिया इसमें मोहरों के खुलने में?
We are now speaking from the fifth seal, or the sixth seal rather, and that.
अब हम पांचवी मोहर से बोल रहे हैं, या बल्कि छठवीं मोहर, और ये हम छठवें अध्याय के बारहवें पद से ले रहे हैं नीचे सत्रहवें तक। ये मोहरों में एक लंबी है, यहाँ पर बहुत सी चीजें घटित हुई हैं। और अब पिछली रात्रि का एक छोटा सा दोहराना बताया, एक प्रकार से एक छोटी भूमिका हर बार, और कहते हैं मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उस बॉक्स में पाया मेरे लिए चार या पांच महत्वपूर्ण बातें, मुझे ये बताया गया, और मैं निश्चय ही क्षमा याचना चाहता हूँ। क्या टेप चल रहे हैं? टेप चल रहा है। मैं अपने सेवक भाइयों से क्षमा याचना चाहता हूं, और जो लोग यहां पर हैं, वे कहते हैं उस रात्रि जब मैं एलिया के विषय में बोल रहा था, उस घड़ी में जब वे थे, उसने सोचा कि केवल वही एक है जो उठा लिए जाने में जा रहा है, या केवल वही एक बचने वाला है। मैंने 700 कहा बजाय 7000 के, क्या ये ठीक बात है? भाई मुझे निश्चय ही खेद है इसके लिए लोगों, मैं इससे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये बस साधारण सी बोलने की गलती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये 7000 है। मैंने बस ये ठीक नहीं बोला, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और इसका ये अर्थ है मैं प्रसन्न हूँ कि आप ध्यान दे रहे थे कि मैं क्या कहता हूँ, और आप देखिए तब ये, क्योंकि ये 7000 है। इस पर मेरे पास दो या तीन टिप्पणियां हैं, जिसने कहा भाई ब्रणम मैं विश्वास करता हूं आप गलती कर रहे थे, ये कहा क्या वे 7000 नहीं थे बजाय 700 के? मैंने सोचा निश्चय ही मैंने 700 नहीं कहा, समझे कि, और फिर मैं बिली, और तब मैं पहली चीज आप जानते हैं मैंने दूसरी टिप्पणी उठा ली, इसने कहा भाई ब्रणम आप थे, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने 700 कहा है। एक व्यक्ति ने कहा भाई ब्रणम क्या ये एक आत्मिक दर्शन था जो कि एक प्रतीक होने जा रहा है, और आप इसे 7 से दर्शा रहे हैं? ये लोग धार पर खड़ा कर देते हैं जब आप इन बातों को सोचते हैं, देखिए, और यही पर्याप्त था कि ये मुझे धार पर रखता है। आज कुछ घटित हुआ जब मोहर खुली थी कि मैं पूरी रीति से आंगन में बाहर आ गया, बस चलने लगा वहाँ बाहर आंगन में थोड़ी देर के लिए, ये ठीक बात है, ये बस साधारण मेरी सांस मुझमें से निकल गई, समझे? इसलिए आप बात करते हैं एक तनाव, ओ प्रभु, समझे? दूसरी बात, आप ठीक वही हैं जो मैं कहता हूँ, और परमेश्वर मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराने जा रहा है जो मैं आपको बताता हूँ, समझे? और इसलिए मैं पूरी रीति से निश्चित होना चाहिए, जितना निश्चित मैं हो सकता हूँ, देखिए इन बातों के लिए, क्योंकि ये एक जबरदस्त समय है जिसमें हम जी रहे हैं। जी हाँ, मैं सोमवार रात्रि को चंगाई सभा के लिए सोच रहा था, भाई नेविल क्या ये आपके साथ कहीं विवरण डालेगी? ये अच्छा है। मूल्यवान भाई नेविल, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने इसे बस एक बना दिया है, मैं सोचता हूँ तब आदर्श खो दिए, ये वो निश्चय ही एक वास्तविक जिंदा दिल और मेरा मित्र है, मैं आपको बताऊंगा। अब आराधनालय बन गया है, और संडे स्कूल के कमरे और हर चीज क्रम में तैयार है यहाँ, और आप में से कुछ लोग जो यहाँ आसपास में हैं, जेफरसन विले के आसपास आराधनालय आना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छी जगह है, और संडे स्कूल के कमरों के लिए अच्छा स्थान, अच्छे शिक्षक और वयस्कों की कक्षा के लिए भाई नेविल यहाँ पर हैं, एक वास्तविक पास्टर। मैं ये उनको चढ़ाने के लिए नहीं कहता हूँ, परंतु मैं बल्कि उन्हें एक छोटा गुलाब देता हूँ बजाय सारी माला के, उसके चले जाने के बाद। और भाई नेविल, मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब मैं एक लड़का था। वो अब भी जरा नहीं बदले, वो अब भी ऑर्मन नेविल हैं, जैसा कि वे सदा से थे। मुझे मुलाकात याद है, यहाँ तक कि बहुत ही कृपालु कि मुझे अपने प्रचार मंच के लिए कहा, जब वो यहाँ नगर में मेथोडिस्ट प्रचारक थे और हमारे पास वहाँ क्लार्क विले में एक अच्छी भक्त मंडली थी। मैं समझता हूँ कि वो हॉवर्ड पार्क हैरिसन एवेन्यू मेथोडिस्ट चर्च कहलाता था। मैं सोचता हूँ कि वहीं जहाँ उसने आपको पाया होगा, वहाँ पर बहन नेविल, वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ सदस्य थी। मैं वापस आया और मैंने कलीसिया से यहाँ पर कहा, मैंने कहा वो था, वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है और इन्हीं किन्हीं दिनों में मैं उसे प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा देने वाला हूँ। ये हो गया, वो यहाँ है और अब वो मेरा यार है, ठीक मेरे साथ, ऐसा सम्मान योग्य, आदर योग्य मनुष्य। वो सदा मेरे साथ खड़ा रहा, जैसे जितना समीप वो हो सकता था। जो भी मैं कहता वो बस मेरे साथ रहता और उसी पट्टी का रहता। यहाँ तक कि जब वो पहली बार अंदर आया तब वो संदेश को नहीं समझ सका, परंतु उसने इसका विश्वास किया और इसी के साथ बना रहा। ये सम्मान, ये आदर इस प्रकार के भाई को, मैं उसके लिए बहुत कुछ कह सकता हूँ, और अब प्रभु उसे आशीष दे। ठीक है, अब थोड़ा सा पूर्व अवलोकन बीती सांझ का, पांचवी मोहर के टूटने में। हम सारे में वापस नहीं जाएंगे आज रात्रि, उतना ही पीछे कि पांचवी मोहर को लें। अब हम पाते हैं वहाँ एक मसीह विरोधी ने सवारी की और स्वयं को उन तीन सामर्थों के द्वारा घायल किया। ये सब एक सामर्थ में चले गए और पीले घोड़े पर सवार हुआ, मृत्यु उस अथाह गढ़े में, उस नरकवास में जहाँ से वो आया। और तब हम पाते हैं जब वचन कहता है, जब शत्रु बाढ़ के समान आता है, परमेश्वर का आत्मा उसके विरोध में स्तर को और ऊंचा कर देता है। और गत रात्रि हमने इस वचन में प्रमाणित होते हुए देखा, क्योंकि वहाँ पर चार पशु थे जिन्होंने चार बार उत्तर दिया कि इस घुड़सवार ने सवारी की, और उसने हर बार एक अलग घोड़े पर सवारी की, एक सफेद घोड़ा, फिर लाल घोड़ा और एक काला घोड़ा और फिर पीला घोड़ा। और हम पाते हैं कि वे रंग और वे क्या थे और उन्होंने क्या किया, और फिर सीधा वापस कलीसियाई युगों में लिया, और इसने ठीक वही किया, बिल्कुल ठीक। इसलिए आप देखते हैं, जब परमेश्वर का वचन आपस में मेल खाता है, इसका अर्थ है ये ठीक है। आप देखिए, जी हाँ, मैं किसी भी बात का विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाती है, सदा आमीन है, समझे। अब जैसा एक व्यक्ति ने कहा, उनका एक दर्शन था और कहा कि ये था, और वे जानते हैं कि ये प्रभु देता है, क्योंकि ये एक बड़ी सामर्थ के साथ आता है। अच्छा दर्शन ठीक हो सकता है, परंतु यदि ये वचन के साथ नहीं है और वचन के विरोध में है तो ये सही नहीं है, समझे। अब हो सकता है यहाँ पर बहुत से मार्मोन भाई बहन उपस्थित हों, और हो सकता है कुछ इन टेपों को लें अब और ये ना कहना चाहें, कुछ बहुत अच्छे लोग मैं और आप उनसे मिलना चाहते हों, मार्मोन लोगों में होंगे, बहुत ही अच्छे हर तरह के लोग। और फिर उनका भविष्यद्वक्ता जोसेफ स्मिथ, जिसे कि मेथोडिस्ट के लोगों ने उसे यहाँ इलिनॉइस में मार डाला वहाँ अपनी यात्रा में, और इसलिए तब वो अच्छा मनुष्य। और दर्शन, मैं बिल्कुल भी संदेह नहीं करता उन दर्शनों का जो उसने देखे, मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक ईमानदार व्यक्ति था, परंतु दर्शन जो उसे मिले वे वचन के विरुद्ध थे, समझे। इसलिए उनके पास वो मार्मोन बाइबल होनी ही थी कि इसे बनाए रखें, समझे। यही यहाँ मेरे लिए है, ये है, यही कारण है, केवल वचन, यही बात है, समझे। एक बार एक सेवक विदेश से आया और मैंने उसे वहाँ बाहर देखा एक कार में सवारी करते हुए के साथ, जो कि नहीं, एक स्त्री के साथ। वे एक सभा में आए और मैंने पाया वे दो तीन दिन से यात्रा में थे, वो और वो सभा में एक साथ आए, और स्त्री विवाहित थी तीन या चार अलग अलग समय में। और ये सेवक होटल के गलियारे में चलता हुआ आया जहाँ मैं था, और दौड़कर मुझसे हाथ मिलाया, और मैंने उससे हाथ मिलाया, उठा और मैं उससे बातें कर रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जब आपके पास समय हो क्या मैं आपसे अपने कमरे में बात कर सकता हूँ एक क्षण के लिए। उसने कहा निश्चय ही भाई ब्रैनम। मैं उसे कमरे में ले गया और मैंने सेवक से कहा, मैंने कहा आदरणीय श्रीमान आप इस देश में परदेशी हैं। मैंने कहा परंतु इस स्त्री का बहुत नाम है। मैंने कहा क्या और आप एक अमुक अमुक स्थान से होते हुए आए हैं? और इस अमुक अमुक स्थान में बोला हाँ श्रीमान। और मैंने कहा क्या आप डरे नहीं कि ये एक प्रकार से होगा? मैं आप पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, परंतु क्या आप नहीं सोचते कि इसका प्रभाव आपके सम्मान पर एक सेवक के समान पड़ेगा? क्या आप नहीं सोचते हमें थोड़ा इसे अच्छा आदर्श रखना चाहिए? और उसने कहा ओ ये महिला एक संत है। मैंने कहा मैं इसमें संदेह नहीं करता हूँ, परंतु मैंने कहा परंतु भाई बात ये है हर कोई जो उसे देखता है संत नहीं है। देखिए वे ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और मैंने कहा मैं विश्वास करता हूँ अच्छा हो कि आप ध्यान रखें ये एक भाई दूसरे भाई को। और उसने कहा मैंने कहा वो महिला अब 4 या 5 बार विवाह कर चुकी है। और उसने कहा जी हाँ मैं ये जानता हूँ। कहा आप जानते हैं मैंने कहा आप क्या अपने घर की कलीसिया में ये नहीं सिखाते क्या आप इसके लिए? इसलिए कहा नहीं, परंतु कहा आप जानते हैं मुझे इसके लिए दर्शन मिला था भाई ब्रैनम। मैंने कहा भाई ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा उसने कहा क्या बुरा मानते हैं? कहा मैं विश्वास करता हूँ आपको थोड़ा सा आपकी शिक्षा में सुधार सकूँ इस विषय में। और मैंने कहा ठीक है। और वो मैंने कहा मैं इस बात को जानकर प्रसन्न होऊंगा श्रीमान। और उसने कहा अच्छा ठीक है। कहा आप जानते हैं इस दर्शन में उसने कहा मैं सोया हुआ था। और मैंने कहा जी हाँ। तब मैंने देखा ये एक स्वप्न था समझे। और उसने कहा मेरी पत्नी बोला वो किसी और पुरुष के साथ संग रह रही थी और कहा और मेरी आसपास घूम रही थी और कहा तब वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा ओ प्रिय मुझे क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो। कहा मैं खेदित हूँ और मैंने ये किया अब से आगे मैं सच्ची बनी रहूंगी। कहा निसंदेह मैंने उससे इतना अधिक प्रेम किया मैंने बस उसे क्षमा कर दिया। कहा ठीक है। और कहा तब और कहा क्या आप जानते हैं क्या तब इस दर्शन का अनुवाद मिला। कहा वो एक स्त्री और निश्चय ही वो इस सारे समय में विवाहित थी और आदि आदि। और कहा कि उसके लिए ये ठीक थी कि उसने विवाह किया क्योंकि वो परमेश्वर ने उससे इतना प्रेम किया कि वो जितनी बार चाहे विवाह कर सकती थी जहाँ तक हो। मैंने कहा आपका दर्शन जबरदस्त मीठा था परंतु यहाँ ये मार्ग से हटा हुआ था। मैंने कहा ये गलत है देखिए आपको ये नहीं करना चाहिए था ताकि समझें। परंतु जब आप वचन में देखते हैं वचन के साथ मेल खाना चाहिए जब ये मिलता है तो निरंतरता में होना चाहिए वे वचन जहाँ ये पर छूटता है तो यहाँ दूसरा वाला आता है और इसके साथ मेल खाता है और सारे चित्र को बनाता है जैसे कि आपस काटने वाली पहेली के समान रखते हैं आप टुकड़ा ढूंढते हैं और इसमें सही बैठता है इसमें कुछ और सही नहीं बैठ सकता तब आप चित्रों को तय कर रहे होते हैं और वहाँ केवल एक ही इसे कर सकता है वो मेमना है और इसलिए हम उसे देख रहे हैं। परंतु हम पाते हैं कि ये सवार वो एक सवार था जिसने इन घोड़ों पर सवारी की और फिर हमने यहाँ तक इसका पीछा किया देखा कि उसने क्या किया और सब कुछ और पाया कि पिछली कलीसियाई कालों में ठीक वही जो उसने किया। तब जब वो किसी निश्चित पशु पर गया और निश्चित चीज को किया हम पाते हैं कि वहाँ एक जो भेजा गया था जो उसने उसका सामना किया वहाँ एक पहले युग के लिए भेजा गया था मेमने का सिंह का वो वचन था निसंदेह मसीह अगला बैल या उस अंधकार के काल में जब कलीसिया संस्थागत हो गई थी और धर्म सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया था बजाय वचन के। और स्मरण रखें सारी बात दो बातों पर आधारित थी एक मसीह विरोधी दूसरा वाला मसीह का और आज भी वही बात है वहाँ कोई आधा मसीह नहीं है वहाँ कोई शालीन पियक्कड़ मनुष्य नहीं है कोई काली सफेद चिड़ियाएं नहीं कोई पापी संत नहीं आप या तो पापी या एक संत हैं समझे वहाँ कोई बीच में नहीं है आप या तो नया जन्म पाए हुए या आप नया जन्म पाए हुए नहीं हैं आप या तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं कोई मतलब नहीं आपको कितनी संवेदनाएं होती हैं यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो आप इससे भरे हुए नहीं हैं समझे। और यदि आप इससे भरे हुए हैं आपका जीवन ये दर्शाता है सीधा इसी पर जाता है समझे किसी को इस विषय में कुछ नहीं बताना वे इसे देखते हैं देखिए क्योंकि ये एक मोहर है। अब और हम उन पशुओं को पाते हैं हर बार कैसी उनकी सवारी हुई एक को उसकी सेवकाई में भेजा गया, राजनीतिक सामर्थ्यों में धार्मिक शक्तियों को और राजनीतिक शक्तियों को एक साथ जोड़ना। हम पाते हैं परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य इसका सामना करने को भेजा। हम ठीक वापस जाकर और देखते हैं कि ये कौन सा कलीसिया युग था और पलट कर देखते हैं और वहाँ ये वहाँ पर था ठीक उसी प्रकार से। तब हम पाते हैं दूसरा युग आता है और शत्रु मसीह विरोधी को धर्म के नाम में भेजता है, मसीह के नाम की अधीनता में, कलीसिया के नाम की अधीनता में। जी हाँ श्रीमान, यहाँ तक कि कलीसिया के नाम की अधीनता में गया, वो वास्तविक कलीसिया थी। उसने कहा, समझे, मसीह विरोधी रूस नहीं है, वो मसीह विरोधी नहीं है, मसीह विरोधी बहुत ही समीप है, जैसा वास्तविक मसीहत। यहाँ तक कि बाइबल ने कहा ये हर चीज को मूर्ख बना देगा जो पहले से ठहराया हुआ नहीं है। ये ठीक बात है, बाइबल ने ये कहा है, अंत के दिनों में हर चीज जो पहले से ठहराई हुई नहीं थी, चुने हुए, ये कहता है चुने हुए। अब कोई वचन लेता है और वापस आपके हाशिए पर भागता है। अब देखिए इसका क्या अर्थ है, ये कहता है चुने हुए, पहले से ठहराए हुए, समझे, ये हरेक को मूर्ख बनाएगा जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं संसार की सृष्टि से पहले। जब मेमना वध किया गया था, नाम पुस्तक में लिखे गए थे। आज रात्रि वो महिमा में पवित्र स्थान में खड़ा हुआ है, बिछवाई कर रहा है उन हर प्राणों के लिए जिनके नाम उस पुस्तक में हैं, और कोई वो नाम नहीं जानता सिवाय उसके। वही एक है जिसके हाथ में वो पुस्तक है, और वो जानता है जब वो अंतिम वाला भीतर आता है तब उसके बिछवाई के दिन समाप्त हो जाते हैं। वो तब दावा करने आता है जिनकी उसने बिछवाई की है। वो निकट छुड़ाने वाला कुटुम्बी का कार्य कर रहा है। अब वो अपनों को लेने के लिए आता है। ओ प्रभु, इससे हर मसीह को तैयार हो जाना चाहिए कि अपने आप को जांचे और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाए रखे, कहते रहे, ओ प्रभु मुझे साफ कर, मेरे जीवन में देख और मुझे देखने दे कि मेरा खराब भाग कहाँ है, मैं इसे जल्दी ही मार्ग से हटा दूं, क्योंकि यदि धर्मी कठिनता से बचेगा तो पापी कहाँ होगा और अधर्मी दिखाई पड़ेगा। ये जांचने का समय है, और यदि आप इसे रखना चाहेंगे और चाहते हैं कि और वचन को देना। अब मैं नहीं चाहता कि आप इस पर मुझसे प्रश्न करें, क्योंकि ये मुझे दूसरे पर ले जाएगा, मेरा अर्थ अपने प्रश्नों को लिखना। मैं सोचता हूं कि जो भी है प्रश्न हो चुके हैं। ये जांच पड़ताल न्याय का समय है, ये ठीक बात है। अब हम इसे तुरहियों पे लेंगे जब हम उस पर आते हैं, जब भी प्रभु देगा, या कटोरे, और हम इसे जांच के न्याय पर पाएंगे जब संकटों के आने के थोड़ा सा पहले, और हम देखते हैं कि ये सच है। और तीन स्वर्गदूत जो पृथ्वी पर प्रहार करते हैं चिल्ला रहे हैं, हाय हाय पृथ्वी के रहने वालों पर हाय। और हम एक भयानक समय में रह रहे हैं, एक समय जो अब देखिए ये चीजें जिनमें हम अब हैं, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय, ये कलीसिया के चले जाने के बाद है। देखिए ये चीजें क्लेश के समय में हैं, और मैं सोचता हूँ इस बात को हर विश्वासी के हृदय में बैठ जाना चाहिए कि ये कलीसिया कभी भी क्लेश के समय में नहीं जाएगी। आप कलीसिया को कहीं भी क्लेश में नहीं रख सकते। मैं आप कलीसिया को रखते हैं न कि दुल्हन को। देखिए दुल्हन जा चुकी है, क्योंकि देखिए वो उसमें एक भी पाप नहीं है, उसके विरोध में एक भी चीज नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे ढांप रखा है, और निरंजक ने उसे उसके हर पाप को दूर कर दिया है, यहाँ तक कि उसका स्मरण भी नहीं है, एक भी चीज नहीं सिवाय शुद्धता के, सिद्ध परमेश्वर की उपस्थिति में। ओह, इससे दुल्हन को अपने घुटनों पर आ जाना चाहिए और परमेश्वर को पुकारना चाहिए। मैं एक छोटी कहानी के विषय में सोचता हूँ, यदि मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं ले रहा हूँ इस प्राथमिकी में। मैं एक उद्देश्य के लिए करता हूँ, अनुभव के लिए, जब तक मैं आत्मा का अनुभव करता ठीक आरंभ करने के लिए। ये एक पवित्र चीज है, समझे। देखिए वहाँ इन बातों को कौन जानता है, कोई नहीं सिवाय परमेश्वर के, और वे प्रकट नहीं होने थे, और बाइबल में सिद्ध के वे आज की दिन तक प्रकट नहीं हुए। ये बिल्कुल ठीक बात है, समझे, इनके लिए अनुमान लगाए गए, परंतु अब हमें सिद्ध मिल जाना चाहिए, वो सत्य, प्रमाणित सत्य, समझे। ध्यान दें, अब वहाँ पश्चिम में एक छोटी लड़की थी कि वो कैसे एक मनुष्य के साथ प्रेम कर बैठी। एक पुरुष, उसने उससे प्रेम किया, एक पशुओं का खरीदने वाला वहाँ एक आर्मर कंपनी के लिए निकल कर आया, और उनके पास एक महान था। एक दिन उनका मालिक आया, मालिक का लड़का शिकागो से, और उन्होंने उन्हें एक नियमित पश्चिमी सीमा पर लगा दिया। वहाँ की लड़कियाँ उन्होंने पोशाकें पहनी, उनमें से प्रत्येक उस लड़के को पाना चाहती थी। निश्चय ही आप जानते हैं, क्योंकि वो मुख्य पुरुष का लड़का था, इसलिए उन्होंने अपने पश्चिमी सीमांत के वस्त्र पहने और वे पश्चिम में करते हैं, और वे उनमें से एक घटनाक्रम में से होकर निकले। और भाई मगायर, मैं सोचता हूँ कि अब वो यहाँ पर हैं। उन्होंने उन्हें वहाँ बिना पश्चिमी पोशाक के पकड़ लिया था और उन्होंने उन्हें कैद में डाल दिया था और उन्हें एक कंगारू अदालत में डाला और इसके लिए भुगतान लिया और फिर उन्हें पश्चिमी वेशभूषा को खरीदने के लिए जाने दिया। और मैंने देखा उनमें बाकी लोग आसपास लंबी बंदूकें लटकाए घूमते फिरते हैं और वे वहाँ के मूल निवासी हैं। वे कुछ उन चीजों में रहने का यत्न करते हैं जो पीछे के बीते हुए दिनों में, समझे? और तब केंटकी में आप उन पूर्व के बीते हुए दिनों में रहने का यत्न करते हैं, अब भी पीछे के रेनफ्रो विलेज के और आदि आदि। आप वापस पुराने दिनों में जाना पसंद करते हैं, ये कुछ है जो इसका कारण है। परंतु जब ये वापस आता है कि वापस सुसमाचार के मूल रूप में आए, आप ये नहीं करना चाहते, आप कुछ आधुनिक सा चाहते हैं। आप देखिए, ये दर्शाने जा रहा है, देखिए आप वहाँ एक और क्या है जो मनुष्य से गलत करवाता है, क्या है वो जो पीता है, चलता रहता है, या एक स्त्री गलत करती है, इसलिए क्योंकि वो यत्न कर रही है, उसमें कुछ है प्यास, उसमें कुछ है प्यास, और वे उसे बुझाने का यत्न कर रहे हैं उस पवित्र प्यास को संसार की चीजों से, जबकि उसे परमेश्वर ने ही बुझाना है। उसने आपको इसी प्रकार से बनाया है कि प्यास हो, यही कारण है कि आप में किसी चीज की प्यास है। परमेश्वर ने आपको उसी प्रकार से बनाया है इसलिए कि आप उस पवित्र प्यास को उसकी ओर मोड़ देंगे, समझे? परंतु जब आप उस प्यास को बुझाने का यत्न करते हैं, कैसे कोई इसे करने का साहस करता है? आपके पास ये करने का अधिकार नहीं है कि उस पवित्र प्यास को बुझाने का यत्न करें कि आपको किसी चीज की प्यास है, और तब आप इसे संसार की ओर मोड़ देते हैं, इसे संसार से संतुष्ट करने का यत्न करते हैं। आप ये नहीं कर सकते, केवल एक ही चीज है जो इसे भर सकती है और वो परमेश्वर है, और उसने आपको इसी प्रकार से बनाया है। इसलिए इन युवा लड़कियों ने वो पश्चिमी वाली पहनी और इस लड़के के लिए जब वो आता है आगे बढ़ी, और उनमें से प्रत्येक निश्चित थी कि उन्हें वो लड़का मिलने वाला है। वहाँ पर एक छोटी चचाजात पशुओं के फार्म पर थी और वो अनाथ थी, और इसलिए वो इन सब के लिए सारे काम किया करती थी, क्योंकि उनके तो नाखूनों पर पॉलिश होती थी, आप जानते हैं, और वे बर्तन नहीं धो सकती थी हाथों से और चीजें, और उसने वास्तव में कठोर कार्य किए। और तब अंत में जब वो लड़का आया, वे बाहर आए और उसके लिए पश्चिमी तरीके और एक घोड़ा गाड़ी, और वे अंदर आए, अपनी बंदूकें चला रहे थे, और आप जानते हैं चल रहा था और कर रहे थे। और उस रात्रि वहाँ उनका एक बड़ा नृत्य था, पुराने रिवाजों वाला नृत्य, और वहाँ पशु फार्म के सारे लोग भीतर अपने नृत्य के साथ आ रहे थे और आदि। और पहली बात आप जानते हैं ये क्यों चल रहा था, दो या तीन दिनों के लिए पर्व। तब एक रात्रि वो लड़का बाहर निकला उस स्थान से कि नृत्य से थोड़ा विश्राम ले, और इन लड़कियों से अलग हुआ, और उसने देखा कि बाड़े की ओर नीचे जा रहा था, वहाँ एक लड़की गई एक प्रकार से पुराने कपड़ों में, और उसके हाथों में पानी से भरा बर्तन था, उसने प्लेटें धोई थी, और उसने सोचा कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ से आई। इसलिए उसने अपना रास्ता उस पुराने टूटे घर की ओर से लिया और वहाँ नीचे जाकर और वापस आया बाड़े के किनारे से, और उससे मिला। वो नंगे पैर थी, वो रुक गई, उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसने देखा ये कौन है, और वो बहुत ही शर्मीली थी, वो इस बड़े व्यक्ति को जानती थी, और ये उन दूसरी लड़कियों की चचेरी बहन थी, उनका पिता इस बड़े आर्मर में फोरमैन था, इसलिए उन्होंने रखा। वो नीचे की ओर देखती रही, उसे अपने नंगे पैरों पर लज्जा आ रही थी। उसने कहा तुम्हारा क्या नाम है, उसने उसे बताया, कहा तुम वहाँ क्यों नहीं थी जहाँ वे बाकी सारे हैं, और उसने बहाने बनाए, और फिर अगली रात्रि उसने उस पर फिर से ध्यान रखा। अंत में वो वहाँ बाहर बैठा था, और वे सारे हर चीज चल रही थी, वो बाड़े के किनारे पर बैठा, उसने उसके आने की राह देख रहा था कि प्लेटों की धुलाई का पानी फेंके, और उसने उसे देखा और उसने उससे कहा, उसने कहा क्या तुम मेरे यहाँ आने का वास्तविक उद्देश्य जानती हो, उसने कहा नहीं श्रीमान मैं नहीं जानती, बोला मेरे यहाँ आने का उद्देश्य है कि मैं अपने लिए पत्नी ढूंढूं। उसने कहा वो चरित्र मैंने तुम में पाया है जो कि उनमें नहीं है, मैं कलीसिया के लिए सोच रहा हूँ। अब देखिए, कहा क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उसने कहा मैं ऐसी बात नहीं सोच सकती। देखिए, ये मालिक का लड़का था, उसके पास सारी कंपनियां और चरागाहें सारे देश में थी और हर चीज। आप देखिए, कहा हाँ, मैं शिकागो में नहीं पा सका। मैं एक वास्तविक पत्नी चाहता हूँ, मैं एक पत्नी चरित्र के साथ चाहता हूँ, और जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम में देखता हूँ। कहा क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उसने कहा ओह, इस बात ने उसे चौंका दिया। उसने कहा हाँ, और उसने कहा ठीक है, और उसे बताया कि वो वापस आएगा। कहा अब तुम अपने आप को तैयार कर लो, और आज से एक वर्ष बाद मैं वापस आऊंगा, ठीक, और मैं तुम्हें ले लूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तुमको इस प्रकार से फिर और काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा और मैं शिकागो जाऊंगा, और मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा जैसा तुमने कभी नहीं देखा होगा। उसने कहा मेरे पास कभी घर नहीं था, मैं अनाथ हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, एक वास्तविक वाला। कहा मैं वापस आऊंगा। वो उसके संपर्क में बना रहा। उस समय के चलते वर्ष भर उसने सब कुछ किया जो वो कर सकती थी, कि $1 प्रतिदिन की मजदूरी से पर्याप्त बचत करे, या जो भी वो धोने आदि से बचाए, कि अपने विवाह का वस्त्र खरीदे, कलीसिया का सिद्ध रूप, समझे। उसने अपना वस्त्र तैयार कर लिया, और आप जानते हैं कि जब उसने अपना विवाह का वस्त्र दिखाया, उसकी रिश्ते की बहनों ने कहा, क्यों तू गरीब मूर्ख, तेरे सोचने का अर्थ है उस तरह के व्यक्ति का तेरे से क्या लेना देना। उसने कहा परंतु उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है। आमीन। कहा उसने प्रतिज्ञा दी है। कहा मैं उसके वचन का विश्वास करती हूँ। ओ, वो तो तुझे मूर्ख बना रहा था। कहा यदि वो किसी को लेगा, वो उनमें से एक को लेगा। जी हाँ, परंतु उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है, मैं उसकी राह देख रही हूँ। आमीन। मैं भी। इस प्रकार से समय बीतता गया, अंत में वो दिन आ गया, निश्चित घड़ी, उसे वहाँ होना था, इसलिए उसने अपना वस्त्र पहन लिया, यहाँ तक कि उसने उससे कुछ सुना भी नहीं, परंतु वो जानती थी कि वो वहाँ होगा, इसलिए उसने अपने विवाह का वस्त्र पहन लिए, चीजों को तैयार कर लिया। अच्छा, तब वे उस पर वास्तव में हंसे, क्योंकि मुख्य मालिक ने फोरमैन के पास संदेशा भेजा, या किसी भी लड़की ने उसके विषय में कुछ नहीं सुना, इसलिए उनके लिए ये सब भेद भरी बात थी, ये निश्चित है। परंतु ये लड़की उन सब के सामने उसके वचन के आधार पर कि वो उसके लिए वापस आएगा, इसलिए वे हंसने लगे और एक दूसरे के गले में हाथ डालकर उसके चारों ओर नाचने लगे। कहा हा, हंस रहे थे। आप जानते हैं, इस प्रकार से कहा बेचारी छोटी मूर्ख। वो वहाँ खड़ी थी, जरा भी लज्जा उसमें नहीं थी, वो अपने फूलों को पकड़े खड़ी थी, और उसका विवाह का वस्त्र वो पहने हुए थी। उसने संघर्ष किया था, आप जानते हैं, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया था, समझे, वो अपने फूलों को थामे हुए प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा अब मैंने आपको बताया ये गलत था, देखिए वो नहीं आ रहा है। कहा मेरे पास 5 मिनट और हैं। कहा वो यहाँ पर होगा। ओ, वे बस हंसे, और लगभग उसी समय पुरानी घड़ी ने 5 मिनटों को पूरा किया। उन्होंने घोड़ों की वो सरपट दौड़ की आवाज सुनी, पहियों के साथ धूल उड़ रही थी, पुरानी घोड़ा बग्गी आकर रुकी, वो उनके बीच में से कूदी, तब बाहर दरवाजे से, और वो बग्गी में से कूदा, और वो उसके बाहों में चली गई। उसने कहा प्रिय, अब ये सब समाप्त हो गया, अपनी चचेरी बहनों नामधारियों को छोड़ दिया, वहाँ बैठी देख रही हैं। वो अपने घर शिकागो को चली गई। मैं इस प्रकार की एक और महान प्रतिज्ञा को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ कि आकर तुम्हें ले जाऊँ। वे कह सकते हैं कि हम पागल हैं, परंतु भाई मेरे लिए ठीक अब, और ये मोहरे इस प्रकार टूटी, इस अलौकिक चीज की अधीनता में, मैं आवाज को लगभग सुन सकता हूँ कि घड़ी का समय वहाँ अनंतता में चला जाएगा। मैं लगभग दूत को देख सकता हूँ कि वहाँ खड़े हुए ये कह रहा है, 7वीं दूत के संदेश के अंत में समय और नहीं होगा, वो छोटी ईमानदार दुल्हन यीशु की बाहों में उड़ जाएगी इन्हीं किन्हीं दिनों में, कि पिता के घर को ले जाए। हम जरा इन बातों पर सोचें जैसा कि हम अब चल रहे हैं। सिंह की सेवकाई पर ध्यान दें, वचन पर, बैल, परिश्रम और बलिदान, सुधारकों की चतुराई और उकाब का युग आ रहा है। ये इन बातों को प्रकट करता है और इन बातों को लेता है और इन्हें दर्शाता है। अब हम पाते हैं कि बीती रात्रि की सभा में भी एक महान भेद इस मोहर के साथ खुला, जो कि मेरी पहली समझ से बिल्कुल उल्टा था। बस मान रहा था कि वो ठीक था। मैंने सदा उन प्राणों को जो वेदी के नीचे थे आरंभ के मसीही समझा, परंतु बीती रात्रि हमने पाया जब प्रभु परमेश्वर ने वो मोहर हमारे लिए तोड़ी, तो ये पूरी तरह से असंभव है कि ये वे नहीं थे। वे महिमा में चले गए थे और दूसरी ओर, और वहाँ पर वे थे। हमने पाया कि वे यहूदी थे जो उस समय के चलते आए, जहाँ उन 144,000 की अब की बुलाहट में से, जो कि हम आज और कल रात्रि लेते हैं, और छठवीं और सातवीं मोहर के बीच में 144,000 बुलाए गए। और तब हम पाते हैं कि वे लोग शहीद हुए, ये वे मारे गए थे, और तब भी नहीं श्वेत वस्त्र पहने हुए, परंतु उनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में थे और उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए उनमें से प्रत्येक को। और हमने वो लिया, और ये संसार में कुछ नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता, सिवाय उन यहूदियों के झुंड को छोड़ जो पहले वाले संकट काल से होकर निकले, जो अंतिम युद्धों के समय वे थे। वे प्रत्येक ने उनसे घृणा की, और आइकमैन ने उनमें से लाखों जर्मनी में मार डाले। आपने वो मुकदमा सुना है, लाखों निर्दोष लोग घात किए गए, यहूदी, केवल इसलिए क्योंकि वे यहूदी थे और कोई कारण नहीं। यहाँ पर बाइबल ने कहा कि वे परमेश्वर के लिए, अपनी गवाही के लिए मारे गए, परमेश्वर के वचन के लिए, और जो गवाही उनकी थी। अब हम पाते हैं कि दुल्हन परमेश्वर का वचन थी और यीशु मसीह की गवाही। इनके पास यीशु मसीह की गवाही नहीं थी। और हम पाते हैं कि बाइबल कहती है सारा इसराइल पहले से चुने हुए इसराइली बचा लिए जाएंगे, रोमियो 11। और अब हम जानते हैं कि, और वहाँ हम उन प्राणों को देखते हैं, और देखिए कितने समीप, क्यों नहीं ये पहले हो सका, क्योंकि ये पहले हुआ ही नहीं था। आप देखिए, अब आप देख सकते हैं, देखिए महान पवित्र आत्मा इन चीजों को आते हुए देख रहा था, उन युगों को समयों से होते हुए, और अब ये प्रकट किया गया है। और फिर आप वहाँ देखते हैं और देखते हैं कि ये सत्य है, यही जहाँ पर ये है। अब ये पीड़ाओं के शहीद थे, या पहली वाली पीड़ाओं के, आइकमैन की। अब वे केवल 144,000 की प्रतीक थे, जिसमें कि हम प्रवेश कर रहे हैं छठी और सातवीं मोहर के बीच में, समझे। सातवीं मोहर केवल एक चीज है बस, और ये स्वर्ग में आधी घड़ी का सन्नाटा है, और अब केवल परमेश्वर इसे प्रकट कर सकता है। इसका प्रतीक तक कहीं नहीं है। ये कल रात्रि मेरे लिए प्रार्थना करें, समझे। अब हम इस पर ध्यान देते हैं, जैसा कि हम छठवीं मोहर में जाते हैं, अब होने पाए स्वर्गीय पिता हमारी सहायता करें, जैसे कि अब हम इस छठवीं मोहर को तय करते हैं। अब 12वां पद छठवें अध्याय का, जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे। वहाँ ध्यान दें, उनको देखें, सामर्थी लोग, देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने वेश्या के व्यभिचार की, क्रोध की मदिरा पी, समझे। ये ठीक वही वर्ग है जिसने उसके मदिरा में से पिया, समझे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। क्या ही परिचय है, देखिए अब सवार का, सवार के पशु और उत्तर देने वाले पशु नहीं है, तब हमने लिए हम शहीदों को सिंहासन के नीचे देखते हैं। अब ये उस समय से ये शहीद सच्चे रूढ़िवादी यहूदी जो मसीही विश्वास में मारे गए या धार्मिक विश्वास में, क्योंकि वे मसीह नहीं हो सकते हैं। स्मरण रहे, परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और वे लंबे समय के लिए अंधे होने जा रहे हैं, जब तक कि अन्य जाति कलीसियाएं मार्ग से न हटा ली जाएं, क्योंकि परमेश्वर एक साथ दो लोगों से एक समय में व्यवहार नहीं करता, क्योंकि ये उसके वचन के बिल्कुल विरोध में है। याद रहे, वो इसराइल के साथ सदा एक राष्ट्र के समान व्यवहार करता है। ये इसराइल का राष्ट्र है, अन्य जाति एक व्यक्तिगत के समान। लोग अन्य जातियों में से लिए गए और ये अन्य जाति के लिए होना था, बनना था, संसार के सारे लोगों से बनना है। इसलिए अब और तब कुछ यहूदी इसमें आते हैं, समझे, जैसे कि अरब के लोग और आयरिश और भारतीय और जो भी है, ये सारे संसार के लोग हैं, इसे दुल्हन गुलदस्ता बनाते हैं, समझे। परंतु अब जब ये व्यवहार पर आता है, तब इसराइल के साथ 70वें सप्ताह के अंतिम भाग में वो उनके साथ एक राष्ट्र के समान व्यवहार करता है। अन्य जाति समाप्त हो गए। वो घड़ी जल्द ही आ रही है और हो सकता है अभी इस रात्रि की परमेश्वर पूरा करके अन्य जाति से पूरी रीति से फिर जाएगा। ठीक उसने ऐसा कहा है, वे यरूशलेम की दीवारों को रौंदेंगे जब तक अन्य जाति का समय पूरा ना हो जाए, समय समाप्त हो जाएगा। जी हाँ श्रीमान। और तब जो मलिन है मलिन ही बना रहेगा, वो जो धर्मी है धर्मी ही रहे, समझे। वहाँ पवित्र स्थान के सिंहासन पर कोई लहू नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहाँ वेदी पर और लहू नहीं है, बलिदान हटा लिया गया और वहाँ कुछ नहीं है सिवाय धुआं और बिजली और न्याय वहाँ है, और ठीक वही जो यहाँ आज रात्रि उंडेला गया है। देखिए, मेमने ने इसे पूरा कर दिया है, हट गया, उसका बिचवाई का कार्य समाप्त हो गया वहाँ सिंहासन पर से। और वो बलिदान, जैसा कि हमने इसका सिद्ध प्रतीक छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी के समान लिया, वो लहू लुहान मेमना जो सामने आता है, एक मेमना जो बलिदान किया गया, वो लहू लुहान वाला मारा गया, कुचला गया, आगे आया और उसके हाथ से पुस्तक को ले लिया, और यही है, दिन समाप्त हो गए। अब वो दावा करने आ रहा है जिसको उसने छुड़ाया है, आमीन, जो कि वो कुछ मेरे से होते हुए भेजता है। अब हम पाते हैं, यूहन्ना ने कहा, मैंने देखा कि उसने छठवीं मोहर को खोला था, वहाँ एक बड़ा भूकंप हुआ था, तब सारी प्रकृति बाधित हो गई, समझे। परमेश्वर महान चीजें कर रहा है, जैसे कि रोगियों की चंगाई और अंधों की आंखों को खोलना, और महान कार्य कर रहा है। परंतु हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रकृति ने एक गिरावट को लिया। जी हाँ, सारी प्रकृति ने। देखिए क्या हुआ, वो भूकंप, सूर्य काला हो गया और चांद अपना उजियाला नहीं देगा और सितारे हिल के गिर पड़े, क्यों, ये सब चीजें हुई। देखिए, ठीक इस छठवीं मोहर के खुलने के समय पर, यही जब ये घटित हुआ, ठीक उन शहीदों की घोषणा के तुरंत पश्चात, शहीद भी पूरे हो चुके थे। अब आप देखिए, हम ठीक उस घड़ी के समीप हैं, हम किसी भी समय सकते हैं। देखिए, क्योंकि कलीसिया अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। परंतु याद रखें, जब ये बातें होंगी, दुल्हन यहाँ पर नहीं होगी। बस याद रखें, दुल्हन जा चुकी है, उसे इन सब में से होकर नहीं निकलना है। ये कलीसिया की शुद्धता के लिए क्लेश का समय है, ये उस पर डाला गया है कि वो इसमें से होकर निकले, ना कि दुल्हन। वो अपनी प्रिया को अलग से ले गया। जी हाँ श्रीमान, वो छुड़ाई जा चुकी है। देखिए, ये एक प्रकार से उसका अपना ही चुनाव है, उसकी अपनी इच्छा, जैसे कोई भी मनुष्य अपनी दुल्हन लेता है, समझे। अब भूकंप, आइए वचनों की तुलना करें। अब मैं चाहता हूँ, क्या आपके पास कागज पेंसिल है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें मेरे लिए, जैसा कि आप लिखना चाहते हैं इसे लिखें, क्योंकि जब तक आप टेप लेने जा रहे हैं, अब हम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ें, जैसा कि आप करते हैं। इस महान घटना से वचनों की तुलना करें कि हम देखेंगे कि ये महान रहस्य या भेद को जो छठवीं मोहर के नीचे था इस छुटकारे की पुस्तक का, अब इसमें रखें, ये छिपे हुए भेद हैं और छह मोहरें मिलाकर एक बड़ी पुस्तक है। ये छह खर्रे एक साथ लिपटे हुए हैं और ये सारी छुटकारे की पुस्तक खोल देते हैं। इसी प्रकार से सारी पृथ्वी छुड़ाई गई थी। यही कारण है कि यूहन्ना रोया, क्योंकि यदि कोई उस पुस्तक को ना ले सकता होता तो सारी सृष्टि हर चीज नष्ट हो गई थी। वो बस वापस परमाणुओं और अणुओं में बदल जाती और आदि आदि, और कॉस्मिक प्रकाश और ना ही सृष्टि, व्यक्ति, कुछ भी नहीं, क्योंकि आदम ने पुस्तक का अधिकार खो दिया था। जब उसने अपनी पत्नी की सुनी, उसने इसे खो दिया, और उसने शैतान की सुनी वचन के बदले में तर्क, समझे, ये जब्त कर ली गई थी। तब ये शैतान के गंदे हाथों में नहीं जा सकती थी जिसने उसे अलग से लुभाया, इसलिए ये वापस इसके मूल स्वामी के पास वापस चली गई, जैसे कि कोई भी सारांश दस्तावेज करेगा। देखिए, वापस सीधा इसके मूल स्वामी को, और वो परमेश्वर था, सृष्टिकर्ता, जिसने इसे बनाया और उसने इसे रोक लिया, और इसका एक दाम है और वो इसका छुटकारा, छुटकारे का एक दाम है, और वहाँ इसे कोई नहीं कर सका। उसने कहा, अपनी व्यवस्था बनाई, उसका अपना नियम, छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी, तब वे किसी को नहीं पा सके। हर मनुष्य काम वासना से जन्मा था, भोग की इच्छा से जन्मा, वो मूल पाप में था, शैतान और हवा के, इसलिए वो इसे नहीं कर सका। उसमें कुछ नहीं था, कोई भी पवित्र पोप, याजक, दिव्य डॉक्टर, वो चाहे जो भी है, कोई भी योग्य नहीं था, और वो स्वर्गदूत नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी होना था, उसे एक मनुष्य होना था। तब परमेश्वर स्वयं छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बन गया, मनुष्य की देह लेने के द्वारा, उस कुंवारी के जन्म से होते हुए, और उसने अपना लहू बहाया। वो एक यहूदी का लहू नहीं था, वो किसी अन्य जाति का लहू नहीं था, ये परमेश्वर का लहू था, समझे। बाइबल ने कहा, हम परमेश्वर के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। बालक पिता का लहू लेता है, हम ये जानते हैं। कोई भी चीज पुरुष लिंग से हीमोग्लोबिन उत्पन्न करती है, इसलिए हम पाते हैं, जैसे मुर्गी अंडा देती है, वो अंडा दे सकती है, परंतु यदि मुर्गा या साथी उसके साथ नहीं था तो इसमें से चूजा नहीं निकलेगा, ये उपजाऊ नहीं है। स्त्री केवल एक ऊष्म यंत्री है जो अंडा रखती है, परंतु अंडा आता है, जीवाणु नर से आता है, और इस मामले में परमेश्वर स्वयं ही नर था। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ, कैसे ऊंचा नीचा है और बड़ा छोटा है, परमेश्वर इतना महान था जब तक कि वो नहीं हो गया, यहाँ तक कि उसने अपने आप को ऐसी छोटी चीज न बना लिया, एक छोटे से जीवांश में से एक कुंवारी के गर्भ में, और वहाँ चारों ओर उसने कोशिकाएं और लहू को उत्पन्न कर दिया, और जन्मा था और पृथ्वी पर बड़ा हुआ, और इस प्रकार के आरंभ से शुद्ध, बिल्कुल बिना काम भावना के, और तब उसने वो लहू दिया, क्योंकि वो हमारा निकट कुटुंबी हो गया, और वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी था, और उसने वो लहू मुफ्त में बहाया, उसे ये नहीं करना था, उसने छुड़ाने के लिए ये मुफ्त में दिया। तब वो परमेश्वर की वेदी पर जाता है और वहाँ प्रतीक्षा करता है, जबकि परमेश्वर छुटकारे की पुस्तक को अपने हाथों में पकड़े हुए है, और लहू लुहान मेमना बलिदान की वेदी पर खड़ा हुआ है, वहाँ वो मेमना छुटकारे के लिए बिचवाई कर रहा है। तब कोई इस बात का साहस कैसे कर सकता है कि कहे मरियम या यूसुफ या कोई दूसरा मरणहार बिचवाई करने वाला हो सकता है? आप बिचवाई नहीं कर सकते जब तक वहाँ लहू नहीं है। जी हाँ श्रीमान, मनुष्य और परमेश्वर के मध्य में एक ही बिचवाई है, और वो मसीह यीशु है, यही जो वचन कहता है। वहाँ वो खड़ा है, और जब तक अंतिम प्राण छुड़ा नहीं लिया जाता, और वो फिर वो सामने दावा करने आता है जो उसने छुड़ाया है। ओ, क्या ही महान पिता है वो। अब स्मरण रखें, अब मैंने सदा यही सिखाया है कि दो या तीन की गवाही से हर वचन स्थिर किया जाए, और वचन, जैसे कि आप एक वचन नहीं ले सकते और कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते जब तक कि इसके साथ कुछ और ना चले, समझे। देखिए, मैं एक पवित्र वचन नहीं ले सकता और कहूँ यहूदा ने जाकर अपने को फांसी लगा ली, और दूसरे को लेकर कहूँ तुम भी जाकर ऐसा कर लो, समझे। परंतु इसे देखें, ये बाकी के साथ मेल नहीं खाता। और मैंने सोचा इस छठवीं मोहर के नीचे जब पवित्र आत्मा ने इसे वहाँ तोड़ा और मैंने देखा कि ये क्या था, तब मैंने सोचा कि ये एक अच्छी बात होगी कि कक्षा को आज रात्रि थोड़ा कुछ भिन्न दूं, समझे, क्योंकि हो सकता है मुझे सारे समय बातें करते सुनना आपको थका दे, इसलिए मैंने सोचा कि हम कुछ भिन्न करेंगे। अब ध्यान दें, ये महान घटना छुटकारे के भेद की पुस्तक में मोहरबंद है। अब ये मेमने के हाथ में है, इसे तोड़ने जा रहा है। अब आइए मत्ती के 24वें अध्याय को देखें। स्वयं मेमना बोल रहा है। अब कोई भी जानता है कि मसीह सारी पुस्तक का लेखक है, जहाँ तक कि इसका संबंध है, परंतु यहाँ ये इसकी आवाज है या उसका उपदेश लोगों को, ठीक यहूदियों को। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पुस्तक को इस तरह से पकड़ लें, मत्ती 24 और प्रकाशित वाक्य 6, इस प्रकार से। आइए यहाँ इसकी थोड़ी सी तुलना करें। अब इस पर ध्यान करें और आप इसे पा सकते हैं कि ये कैसे है। यहाँ पर मेमना क्या दिखा रहा है, ठीक प्रतीकों में उसने यहाँ वचन में क्या कहा, बिल्कुल ठीक कर रहा है ताकि ये इसे सही बनाए। अब ये इसमें यहाँ है, यहाँ एक है, वो इसके विषय में बात कर रहा है और यहाँ पर ये घटित हुआ, समझे, ये एक सिद्ध प्रमाण है। अब आइए हम संत मत्ती के 24वें अध्याय में देखें और प्रकाशित वाक्य 6 और मत्ती के 24वें अध्याय से तुलना करें। हम सब ये जानते हैं कि ये वो अध्याय है कि हर ज्ञानी, हर व्यक्ति क्लेश के काल के लिए बातें करता है। ये मत्ती के 24वें अध्याय से आता है। अब चलिए, यदि ये ऐसा है, अब हम क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये छठवीं मोहर न्याय की मोहर है, ये न्याय की मोहर है, ठीक यही जो ये है। अब देखिए, हमारे पास मसीह विरोधी सवार है, कलीसिया को जाते देखा, अब ये समाप्त हो गया, ऊपर गए, तब हम उन यहूदी शहीदों को देखते हैं वेदी के नीचे। अब यहाँ पर न्याय आ रहा है उन लोगों पर जो इन कष्टों के बाद न्याय आएगा, 144,000 छुड़ाए हुए यहूदी। मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा कि ये यहूदी हैं, न कि अन्य जाति। मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि ये यहूदी हैं और न कि अन्य जाति। उनका दुल्हन से कोई वास्ता नहीं है, जरा भी नहीं। वो दुल्हन, हमने दुल्हन को जाते देखा, आप इसे कहीं और नहीं रख सकते। और ये प्रेरितों की पुस्तक के 19वें अध्याय तक वापस नहीं आती। अब ध्यान दें, क्योंकि छठवीं मोहर न्याय की मोहर है, वचन की। अब यहाँ हम इसे आरम्भ करते हैं और अब आइए संत मत्ती का 24वां अध्याय पढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ कुछ देना चाहता हूँ ढूंढने के लिए, मैंने अभी अभी देखा। अब संत मत्ती 1-3, अच्छा, जहाँ के हम इसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। अब और तीसरा पद, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब आइए जरा यहाँ रुकें। ये तीन पद, ये वास्तव में मंगलवार दोपहर बाद हुआ, April 4, AD 30 को, और पहले दो पद दोपहर बाद घटित हुए, April 4, AD 30 में, और तीसरा पद मंगलवार सांझ को घटित हुआ उसी दिन, समझे। वे मंदिर से आए और उन्होंने उससे इन बातों को पूछा कि इस विषय में क्या है और इस विषय में क्या है, इस महान मंदिर को देख, क्या ये शानदार नहीं है। उसने कहा, यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा। तब वो पहाड़ पर जाकर बैठ गया। देखिए, वहाँ उसने आरंभ किया, ये दोपहर बाद, और तब जब इन्होंने किया, उन्होंने उससे वहाँ पर पूछा, कहा, हम कुछ जानना चाहते हैं। ध्यान दें, अब यहाँ पर यहाँ यहूदियों के द्वारा तीन प्रश्न पूछे गए, उसके चेले तीन प्रश्न पूछे गए। अब ध्यान दे, क्या पहला क्या, ये बातें कब होंगी, जब पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं होगा, और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, दूसरा प्रश्न, और संसार का अंत, समझे, वहाँ तीन प्रश्न हैं। अब यहाँ जहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं, वे इन बातों को यहाँ किसी युग में लागू करते हैं। जब आप देखते हैं वो तीन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, वे अब इस पर ध्यान दें, ये कितना सुंदर है। तीसरा पद देखिए, तीसरे पद में अंतिम वाक्यांश, और क्या होगा? पहले वे उसे जैतून पहाड़ पर बुलाकर ले गए, यहाँ अलग, हमें बताएं ये बातें कब होंगी। प्रश्न नंबर एक, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? प्रश्न नंबर दो, और संसार का अंत? प्रश्न नंबर तीन। समझे? तीन भिन्न प्रश्न पूछे गए। अब मैं चाहता हूँ कि आप निकालें और देखें कैसे यीशु उन्हें इन बातों के विषय में बताता है। ओह, ये सुंदर है, ये बस मुझे बनाते हैं। मैं लेता हूँ, वो क्या शब्द था जो हमने बीती रात प्रयोग किया था? प्रकाशन से उत्तेजना। ध्यान दें, अब आइए, अब पहली मोहर निकालें इस पुस्तक की मोहरों में से, और इस मोहर की पहली प्रश्न के साथ तुलना करें, और हर प्रश्न सीधे नीचे इसकी तुलना करें, और देखें यदि ये साथ साथ नहीं चलता जिस प्रकार से हमने दूसरों के खुलने पर किया, कलीसिया युगों और हर चीज बिल्कुल वैसे ही। वहाँ मोहर तब पूरी रीति से खुली हुई। ध्यान दें, अब पहले वाले को पढ़ने वाले हैं। तब उसने उन्हें उत्तर दिया, और तब वो उत्तर देना आरंभ कर रहा है, और हम इसकी मोहर के साथ तुलना करना चाहते हैं। अब ध्यान दें, पहली मोहर प्रकाशित वाक्य 6:1-2 है। अब हम 6:1-2 पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ और देख। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हमने किसको पाया कि ये व्यक्ति कौन था? मसीह विरोधी। मत्ती 24, अब 4 और 5, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। समझे? इसे मसीह विरोधी, यहाँ आपकी मोहर है। समझे? वो यहाँ पर बोला, और यहाँ वे मोहर खोलते हैं, और यहाँ वो था, बिल्कुल ठीक। अब दूसरी मोहर, मत्ती 24:6, प्रकाशित वाक्य 6:3-4। अब देखें, मत्ती 24:6, अब मैं देखूं ये क्या कहता है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। ठीक है, अब आइए दूसरी मोहर लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 6:3-2। देखें अब ये क्या कहता है। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ देख। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। सिद्ध, बिल्कुल ठीक। ओ, मैं चाहता हूँ कि वचन स्वयं ही उत्तर दे, क्या आप नहीं चाहते? पवित्र आत्मा ने ये सब लिखा है, परंतु वो इसे प्रकट करने के योग्य है। अब चलिए तीसरी मोहर पर ध्यान देते हैं। अब ये अकाल है। अब मत्ती 24:7-8, आइए मत्ती में 7 और 8 को लेते हैं। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां और भूकंप होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। देखिए, अब आप इसी पर आ रहे हैं। अब प्रकाशित वाक्य 6वें में, अब हम तीसरी मोहर खोलने जा रहे हैं। ये प्रकाशित वाक्य 6:5-6 से मिलता है। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ और देख। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अकाल, देखिए, ठीक वही मोहर, यही बात यीशु ने कही। ठीक है, चौथी मोहर, मरियम और मृत्यु। ध्यान दें, मत्ती 24, हम 8वां पद पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ चौथी मोहर में ये है, यहाँ मेरे पास है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पीछे क्या पढ़ा? क्या मैंने कुछ गलत पढ़ा? हाँ, मैंने निशान लगाया हुआ है। जी हाँ, हम वहीं पर हैं। अब हम बढ़ रहे हैं, हम जाते हैं। ठीक है श्रीमान, अब आइए सातवें से आरंभ करते हैं, इस पर चौथी मोहर, और छह, सात और आठ दूसरे वाले पर, प्रकाशित वाक्य पर। अब आइए देखते हैं सात और आठ मत्ती 24 का। अब ठीक है, और जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल, मरियां, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। अब चौथी मोहर, जैसा कि हम इसे यहाँ पढ़ते हैं, यह चौथी मोहर सात और आठ से आरंभ हुई, अब इस दूसरे वाले पर। और जब उसने चौथी मोहर खोली और देखो, और चौथे प्राणी ने कहा, आ और देख, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला घोड़ा। अब रुकिए, मैंने इसे यहाँ गलत लिखा है। जी हाँ जी हाँ, अब जरा एक मिनट। अब सात और आठ, चलिए देखते हैं। अब मत्ती 24 सात और आठ को देखें। अब जरा देखें, हम इसे पाएंगे। ये तीसरी है, खुल रही है क्या? नहीं, मत्ती 24 सात और आठ, मुझे खेद है। अब ये वर्षा को खोलता है, या अकाल को खोलता है। ठीक है, अब मरिया और मृत्यु। जी हाँ श्रीमान, अब हम इस पर जा रहे हैं सात और आठ। अब ये चौथी मोहर होगी, देखते हैं हम चौथी मोहर कहाँ मिलती है। और जब उसने चौथी मोहर खोली, चौथी, जी हाँ, ये पीला घुड़सवार है, मृत्यु। देखिए, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और वो पीला घोड़ा और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर ये अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अब देखिए, ये मृत्यु थी। अब पांचवी मोहर मत्ती 24:19-13, आइए देखते हैं यदि मैंने ये सही ली है। अब फिर से समझे, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, आप यही हैं, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और जब और तब बहुत से पकड़वाए जाएंगे और बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब हम पांचवी मोहर पर हैं, और ये पिछली रात्रि थी। देखिए, वे आपको पकड़वाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और आदि आदि। अब यहाँ छठवीं मोहर को देखें, 6:9-11। अब आइए एक को लें, प्रकाशित वाक्य 6:9-11। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। अब आप देखते हैं कि पांचवी मोहर के नीचे हम यहाँ पर यहाँ बलिदान पाते हैं। अब 24:9 में यहाँ हम 13 तक हम यहाँ भी पाते हैं कि ये बलिदान था, वे आपको पकड़वा देंगे, आपको मार डालेंगे और आदि आदि। देखिए, वही मोहर खोली जा रही थी। अब इस छठवीं मोहर में ये वाली जिस पर अब हम आ रहे हैं, मत्ती 24:29-30, 24 और आइए 29 को लें, और 30 यहाँ पर हम हैं। अब हम प्रकाशित वाक्य 6:12-17 को भी लेते हैं। अब ठीक यही जो हम पढ़ते हैं, अब इसे सुने। अब यीशु ने मत्ती में क्या कहा, 24:29-30, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, क्या जब ये क्लेश, ये हल्का क्लेश जिसमें से होकर यहाँ निकले, देखिए, सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अब यहाँ प्रकाशित वाक्य में पढ़ें, छठवीं मोहर, वो जिस पर हम अब हैं। और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला देखा और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। बिल्कुल ठीक, पीछे पलट कर देखें, अब यीशु ने यहाँ क्या कहा, मती 24:29 में सुनिए, तुरंत बाद इस आइकमैन और आदि आदि का मामला, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अब ध्यान दें, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। देखिए, ठीक जो यीशु ने मती 24 में कहा, तुलना करें और यहाँ प्रकाशन वाले ने छठवीं मोहर में जो खोला बिल्कुल ठीक है और यीशु क्लेश के समय के लिए बोल रहा है, समझे। पहले उसने पूछा ये बातें कब होंगी, मंदिर कब हटाया जाएगा, उसने इसका उत्तर दिया। अगली बात उसने पूछी, जब वो समय आएगा, वहाँ शहीद होने का युग आता है और जब ये होगा, जब मसीह विरोधी उठेगा और जब मसीह विरोधी इस मंदिर को हटा देगा। डैनियल, कैसे हम वापस जा सकें, और वहाँ से डैनियल को लिया। जब उसने ये कहा कि ये राजकुमार जो आएगा, आप पढ़ने वाले जानते हैं, और उसे करना क्या चाहिए, वो प्रतिदिन की बलि को बंद करेगा और जो सब उस समय के चलते घटित होगा, कहा। यहाँ तक कि यीशु इसके लिए बोल रहा है, इसके नीचे लाइन खींच लें, कहा, जब तुम उस घृणित वस्तु को जो उजाड़ करा देती है देखो, भविष्यवक्ता डैनियल के द्वारा कहा गया है, जो पवित्र स्थान में खड़ा है, वो क्या है, उमर की मस्जिद, वह मंदिर के स्थान में खड़ी है जब उन्होंने इसे जला दिया था, कहा, वे जो पहाड़ों पर हैं, वे जो घर की छत पर हैं, नीचे आकर घर में से चीजों को न लें, या वो जो खेत में है घर को वापस आए, क्योंकि संकट का समय होगा, आप समझे, और ये सारी चीजें घटित होंगी, उनके नीचे चलते चले जाएं और इसे प्रमाणित करें वापस इस छठवीं मोहर को खोलते हुए। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, यीशु, अब कल रात्रि के लगभग इस पर यीशु ने सातवीं मोहर पर शिक्षा नहीं दी, ये यहाँ नहीं है, ध्यान दें, अब वो और दृष्टांतों पर आगे बढ़ गया। इसके बाद और यहुन्ना ने सातवीं मोहर छोड़ दी, सातवीं, अंतिम सातवीं मोहर, ये एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है, यहाँ तक कि ये लिखी भी नहीं है। देखिए, सातवीं मोहर को छोड़ दिया, दोनों ने ये किया, और प्रकाशन वाला जब परमेश्वर ने बस ये कहा वहाँ था, यहुन्ना ने कहा वहाँ केवल स्वर्ग में सन्नाटा है, यीशु ने इसके विषय में एक भी शब्द नहीं कहा। अब ध्यान दें, पीछे 12वें पद पर ध्यान दें, कोई प्राणी नहीं, ये 12वां पद जो हमारी मोहर पर आरंभ होता है, ये देखने को ये खुल गई, जीवित प्राणी के समान कोई पशु नहीं कि प्रतिनिधित्व करे, या जैसे 5वीं मोहर पर था, क्यों? ये सुसमाचार काल के दूसरी ओर घटित हुआ, उस क्लेश के समय में, ये छठवीं मोहर क्लेश की समय अवधि है, यही जो घटित हुआ, दुल्हन जा चुकी है, समझे, वहाँ कोई भी जीवित प्राणी या कुछ भी ये कहने के लिए नहीं है, ये बस अब परमेश्वर अब कलीसिया के साथ और व्यवहार नहीं कर रहा है, ये जा चुकी है, वो इसराइल के साथ व्यवहार कर रहा है, देखिए देखिए, ये दूसरी ओर है, ये तब है जब इसराइल राज्य का संदेश ग्रहण करता है उन दो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रकाशित वाक्य 11 के, स्मरण रखें, इसराइल एक राष्ट्र है, परमेश्वर का दास राष्ट्र, और जब इसराइल अंदर लाया गया तो ये एक राष्ट्र का मामला होगा, इसराइल जहाँ दाऊद है वहाँ राज्य का युग है, मनुष्य का पुत्र दाऊद सिंहासन पर बैठता है। यही कारण है वो स्त्री चिल्लाई, तू दाऊद की संतान, और दाऊद को दाऊद का पुत्र, परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई कि वो उसके पुत्र को उठाएगा जो उसका सिंहासन लेगा, ये सदा का सिंहासन होगा, समझे, इसका कोई अंत ना होगा। सुलेमान ने ये मंदिर के प्रतीक में दिया और यीशु ने उन्हें यहाँ बता दिया कि ये पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, परंतु वो उन्हें यहाँ बताने का यत्न कर रहा है जो कि वो वापस आ रहा है। तू कब वापस आ रहा है? इसके पहले कि मैं आऊँ ये बातें घटित होंगी, और ये वे हैं। अब हम क्लेश के समय में हैं, स्मरण रखें, जब राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो जाता है, अब ये थोड़ा झटका देने वाला हो सकता है, और यदि वहाँ कोई प्रश्न है और आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, यदि आप कोई प्रश्न रखना चाहते हैं, जब ये कहाँ गया था और इसे करें, यदि आपने नहीं किया, आप इसे पहले से ही नहीं जानते। सहस्र शताब्दी के समय में ये इसराइल जो कि एक राष्ट्र है, 12 गोत्र एक राष्ट्र के समान, परंतु दुल्हन महल के अंदर है, अब वो रानी है, अब वो विवाहित है, और सारी पृथ्वी के लोग इस नगर में आएंगे यरूशलम, और इसकी महिमा को वहाँ उसमें लाएंगे, और फाटक रात्रि में बंद नहीं किए जाएंगे क्योंकि वहाँ कोई रात ना होगी, समझे, फाटक सदा खुले रहेंगे, और पृथ्वी के राजा, प्रकाशित वाक्य 22, अपने तेज और महिमा का सामान उस नगर में लाएंगे, परंतु दुल्हन वहाँ मेमने के संग है। ओह प्रभु, आप इसे वहाँ देख सकते हैं, न कि दुल्हन वहाँ दाख की बारी में परिश्रम करने जा रही है, नहीं श्रीमान, वो दुल्हन है, वो राजा की रानी है, ये दूसरे हैं जो वहाँ परिश्रम करते हैं, राष्ट्र ना कि दुल्हन, आमीन। ठीक है, अब इन संदेश वाहकों पर ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 12, ये दूत, ये दो भविष्यद्वक्ता, वे ये प्रचार करने जा रहे हैं, राज्य जल्द आने वाला है, समझे, स्वर्ग का राज्य स्थापित किया जाने वाला है। वो समय अंतिम 3.5 वर्ष डेनियल के 70वें सप्ताह के यहूदी उसके लोगों से ये प्रतिज्ञा है। अब स्मरण रखें, ये इसे सिद्ध करने के लिए कि ये डेनियल के 70वें सप्ताह का अंतिम भाग है। कल के लिए इस पर मेरे पास प्रश्न है, समझे। अब 70 सप्ताहों की प्रतिज्ञा की गई थी जो कि 7 वर्ष थे, और 7 सप्ताहों के मध्य में मसीहा को काटा जाना था कि उसका बलिदान किया जाए। वो 3.5 वर्ष भविष्यवाणी करेगा और फिर वो लोगों के बलिदान के लिए काटा जाएगा, और 3 अभी बाकी हैं, वो 3.5 वर्ष इसराइल के लिए अभी हैं। तब जब मसीह काटा गया था, यहूदियों को अंधा कर दिया गया था ताकि वे न देख सकें कि वो मसीहा था, और तब जब मसीहा काटा गया था, तब सुसमाचार और अनुग्रह का युग अन्य जाति के पास आया, और वे आए और परमेश्वर ने एक को यहाँ से एक को वहाँ से खींचा, और यहाँ वहाँ से, और उन्हें संदेश वाहकों के नीचे रखा, और यहाँ से और वहाँ से, और यहाँ और वहाँ, और उन्हें संदेश वाहकों के नीचे रखा, और उसने अपना पहला संदेश वाहक भेजा, और उसने प्रचार किया, और एक तुरही बजी, जैसा कि हम इसे थोड़ी देर के बाद लेते हैं, और तब तुरही युद्ध की घोषणा करती थी। तुरही सदा युद्ध की सूचना देती है। संदेशवाहक, वो दूत पृथ्वी पर आता है, संदेशवाहक उस घड़ी का, वो क्या करता है, वो पहुंचता है और एक मोहर खुली, दर्शाया कि तुरही बजी, युद्ध की घोषणा हुई, और वे चले गए, और तब संदेशवाहक मर जाता है, वो इस झुंड को मोहर बंद कर देता है, वे अंदर रखे जाते हैं, और एक संकट उन पर आता है जिन्होंने इसे अस्वीकार किया है, समझे। तब ये आगे बढ़ता जाता है, तब वे संगठित हो जाते हैं और एक और संस्था मिल जाती है, हम अभी इसमें से होकर निकले हैं, तब यहाँ वे एक दूसरी सामर्थ के साथ बाहर आते हैं, देखिए, दूसरी सामर्थ, दूसरा युग कलीसिया का, दूसरी सेवकाई। तब जब वो ये करता है, तब परमेश्वर अपनी सेवकाई के साथ आता है, जब मसीह विरोधी अपनी के साथ आता है, देखिए, एंटी विरोध, वे साथ साथ चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी चीज पर ध्यान दें, उस समय के लगभग कि केन पृथ्वी पर आया, हाबिल पृथ्वी पर आया। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, उस समय के लगभग जब मसीह पृथ्वी पर आया, यहूदा पृथ्वी पर आया, उस समय के लगभग कि मसीह पृथ्वी पर से चला गया, यहूदा पृथ्वी पर से चला गया, उस समय के लगभग कि पवित्र आत्मा उतरा, मसीह विरोधी आत्मा उतरा, उस समय के लगभग पवित्र आत्मा ने अपने को अंत के दिनों में प्रकट किया, मसीह विरोधी अपने रंग दिखा रहा है, अपनी राजनीतियों से होकर आ रहा है और आदि आदि। और समय के लगभग पवित्र आत्मा पूरी रीति से दृश्य पर आता है, परमेश्वर स्वयं पूरी रीति से सबको छुड़ा ले। देखिए, दौड़ता है ठीक साथ साथ, ये दोनों साथ साथ हैं, केन और हाबिल, कौवा और पंडुकी नाव पर, यहूदा और यीशु, और नीचे तक आप इसे ले सकते हैं। यहाँ मोआब और इज़राइल, वे दोनों मोआब मूर्ति पूजक राष्ट्र नहीं था, नहीं श्रीमान, उन्होंने भी वही बलिदान चढ़ाए जो इज़राइल चढ़ा रहा था, उन्होंने एक ही परमेश्वर से प्रार्थना की। ठीक, मोआब कहलाया लूत की एक पुत्री से था जो अपने पिता के साथ सोई थी, और उसके बालक हुआ, वो बालक मोआब कहलाया था, और उसी से मोआब जाति निकली, मोआबी राष्ट्र। और जब उन्होंने इज़राइल को देखा कि उनका छुड़ाया हुआ भाई आता है, वे सैद्धांतिक लोग थे, वे एक बड़े नामधारी थे, इज़राइल का कोई नामधारी नहीं था, वे बस तंबुओं में रहते थे और जहाँ कहीं तुम जाओ। परंतु मोआब के पास सम्मानित लोग, राजा लोग और आदि आदि थे, और उनके पास वहाँ बालाम था, एक झूठा भविष्य रखता, और उनके पास ये सब था। तब वे वहाँ अपने छोटे भाई को श्रापित करने वहाँ आए, जो प्रतिज्ञा के देश के मार्ग पर थे, अपनी प्रतिज्ञा के लिए जा रहे थे। और वो गया और उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे देश में से होकर निकल सकता हूँ? यदि मेरी गाय पानी पी लेती है तो मैं उसका भुगतान करूंगा, यदि वे घास खा ले मैं उसका भुगतान करूंगा। और उसने कहा, नहीं, तुम इस प्रकार की कोई बेदारी आसपास नहीं करोगे। ये ठीक बात है, आप इस तरह का कुछ भी आसपास में नहीं करेंगे। और तब ध्यान दें, उसने क्या किया, वो इज़ाबेल के रूप में वापस आया और उस झूठे नबी से होते हुए आया, और परमेश्वर के बालकों की गलती का कारण बना, और मोआबी लड़कियों का विवाह इज़राइलियों में करवा दिया, और व्यभिचार का कारण हुआ। उसने उस युग में वही बात की, उस यात्रा में प्रतिज्ञा देश के मार्ग में जिस पर हम हैं। उसने क्या किया, झूठा भविष्यद्वक्ता आया और विवाह किया, और प्रोटेस्टेंट कलीसिया में बुलाया, और नामधारियों का कारण बना, ठीक वैसे ही जो उन्होंने पहले किया। परंतु छोटा पुराना इज़राइली वैसे ही आगे बढ़ गया, उसने बहुत समय तक जंगल में निंदा की, और उन सब पुराने योद्धाओं को मरना पड़ा, परंतु वे सीधे प्रतिज्ञा के देश की ओर आगे बढ़ गए। जी हाँ, हाँ, ध्यान दें, वे सब साथ साथ थे इसके पहले कि वे यर्दन पार जाते। हाँ, मैं इसे पसंद करता हूँ। अब हम ठीक इस समय उस युग में जा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दें, अब हम पाते हैं कि वो समय पिछला वाला, मैंने कहा डेनियल के 70 सप्ताहों के 3.5 वर्ष। अब मैं इसे समीप से इसकी व्याख्या कर दूं, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को देखता हूँ यहाँ जो सदा इस पर ध्यान करता है, और मैं अपने आप को एक शिक्षक के समान स्पष्ट करना चाहता हूँ। ध्यान दें, जब सप्ताहों के 70 अंदर आते हैं, जब डेनियल आने वाले समय का दर्शन देखता है और यहूदियों का अंत, परंतु उसने कहा वहाँ 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, ये 7 वर्ष, इसके मध्य में क्यों मसीहा यहाँ होगा या और काटा जाएगा बलिदान के लिए। अब ठीक यही जो घटित हुआ, तब परमेश्वर अन्य जातियों से व्यवहार करता है जब तक कि अन्य जाति में से अपने नाम के लिए लोग ना ले ले। जैसे ही अन्य जाति कलीसिया उठा ली जाती है, उसने कलीसिया को उठा लिया, और जब उसने किया, मूर्ख कुंवारी वो कलीसिया स्वयं में, दुल्हन ऊपर चली गई और कलीसिया स्वयं बाहर अंधकार में चली गई, जहां रोना विलाप करना और दांत पीसना। उसी समय में लोगों पर क्लेश आ पड़ता है, और जबकि क्लेश आ रहा है, इसी में वे दो भविष्यद्वक्ता प्रकाशित वाक्य 11 के आते हैं कि उन्हें सुसमाचार प्रचार करें, और 1,160 दिनों प्रचार किया। समझे भैया, ठीक 1 महीने में 30 दिन, जैसे कि वास्तविक कैलेंडर में है, ठीक 3.5 वर्ष, ये डेनियल का 70वां भाग, 70वें सप्ताह का अंतिम भाग। समझे, परमेश्वर ने यहाँ इज़राइल के साथ व्यवहार नहीं किया। नहीं श्रीमान, अधिक समय नहीं हुआ, एक भाई ने मुझसे पूछा, कहा क्या मुझे चाहिए कि एक भाई यहाँ इस कलीसिया में, एक मूल्यवान प्रिय भाई ने कहा, मैं इज़राइल जाना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ वहाँ एक जागृति है। किसी ने मुझसे कहा, भाई ब्रणम, आपको इसी समय इज़राइल जाना चाहिए। वे इसे देखेंगे, देखिए आप ये नहीं कर सकते। मैं ठीक वहाँ खड़ा था और मैंने सोचा, वे यहूदी बोले, यदि मैं अच्छा यदि ये यीशु ही मसीह होना है, कहा तो मैं उसे नबी के चिन्ह करते देखूं। हम अपने भविष्यवक्ताओं का विश्वास करते हैं क्योंकि यही जो उन्हें होना चाहिए, क्या ही तैयारी है। मैंने सोचा मैं जाता हूँ। जब मैं ठीक वहाँ पहुँचा, ठीक इसके पास, ठीक मैं था भाई, मैं काहिरा में था और मेरे पास हाथ में मेरा टिकट था इसराइल के लिए, और मैंने कहा मैं जाऊंगा। देखिए यदि वे ये पूछते हैं, यदि वे भविष्यद्वक्ता का चिन्ह देख सकते हैं, हम देखेंगे यदि वे मसीह को स्वीकार करेंगे। स्टॉक होम कलीसिया के लुइस पेत्रुस ने उन्हें 10 लाख बाइबल भेजी हैं और वे यहूदी वहां आ रहे हैं। आपने चलचित्र देखा है, मेरे पास यहां रील में है, ठीक यही, अब आधी रात को 3 मिनट, और वे यहूदी भीतर आ रहे हैं सारे संसार से, हर चीज वहाँ एकत्र होना आरंभ हो गए। इंग्लैंड के वहाँ अंदर जाने के बाद जनरल एलनबाई के समय में द डिक्लाइन ऑफ द वर्ल्ड वार दूसरे पुस्तक में मैं सोचता हूँ यही है, और उन्होंने समर्पण कर दिया, तुर्कियों ने समर्पण कर दिया, तब उसने इसे इसराइल को वापस दे दिया और वो एक राष्ट्र के समान बढ़ रहा है, और अब ये सिद्ध राष्ट्र है, उसका अपना पैसा, मुद्रा, झंडा, सेना और हर चीज, समझे। और ये यहूदी वापस अपनी जन्मभूमि में आ रहे हैं। वे पहली बात जब वे ईरान में गए और वहाँ नीचे उन्हें लेने, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा वे उन्हें वापस इसराइल को ले जाना चाहते थे, उनका स्थान उन्हें दिया, उन्हें वापस उनके देश पैलेस्टाइन जहां उन्हें होना चाहिए। और स्मरण रखें, जब तक इसराइल उस देश से बाहर है, वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर है, जैसे अब्राहम जिसे ये दिया गया था। और वे उस जहाज पर नहीं चढ़ते, उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। वहाँ एक बूढ़ा रब्बी नीचे उतरा, बोला, हमारे भविष्यद्वक्ता ने हमें बताया जब इसराइल घर गया तो ये उकाब के पंखों पर होगा, हवाई जहाज पर घर का मार्ग। अब वो वहाँ बना रहे हैं अंजीर का वृक्ष वापसी में, आमीन। पुराना 6 कोने का सितारा दाऊद का लहरा रहा है, अन्य जाति के दिन गिने हुए हैं, भरे हुए हेंगे के साथ क्लेश काल समीप है, और ठीक यहाँ खड़ा है और मोहरे खोली जा रही है। कलीसिया हवा में अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है, और क्लेश आ गया, तब परमेश्वर नीचे आता है और वहाँ 144,000 को वहाँ खींचता है, आमीन। ओ वहाँ ये सिद्ध है, आप देखते हैं कि मोहरे इसे अब बाहर लेकर आती हैं। देखिए इसे खोल दिया, अब ये अंतिम 3.5 वर्ष लोगों के लिए हैं। यदि आप ये भी ध्यान करें कि ये समय है कि परमेश्वर 144,000 को यहूदियों को बुलाए इन अंतिम 3.5 वर्षों में, देखिए उसने उनके साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं किया, उनके पास भविष्यद्वक्ता नहीं था, वे भविष्यद्वक्ता को छोड़ किसी का भी विश्वास नहीं करेंगे। आप उन्हें मूर्ख नहीं बना रहे हैं, इसलिए वे एक भविष्यद्वक्ता की सुनने जा रहे हैं। जी हाँ श्रीमान, बस यही है कि परमेश्वर ने उनसे आरंभ में ही कह दिया और वे ठीक इसी के साथ बने हुए हैं। उसने कहा तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे बीच में मुझ जैसा भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करेगा। मूसा ने ये कहा है और कहा तुम उसकी सुनना, और जो कोई उस भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनेगा लोगों में से काटा जाएगा। ये ठीक बात है। और आप देखिए उनकी आंखों को अंधा होना था या वे उसे नहीं पहचानेंगे, बजाय इसके अंधे हो गए वे थे, शैतान ने उन पर ये किया, और वे कहते हैं वो भावी बताने वाला है, बालजबू, उसका लहू हम पर हो, हम जानते हैं उसका इससे कोई मतलब नहीं, समझे। और बेचारे लोग अंधे हो गए थे, और यही कारण था कि आइकमैन के लोगों ने और वो सारा झुंड वहाँ पहले मारा गया, भीतर आने का अधिकार था, उनके अपने पिता ने उनकी आंखों को इस प्रकार से अंधा कर दिया कि वो हमें ले सके। वचनों में ये बहुत ही दयनीय बात है, लगभग वहाँ के लिए जरा सोचें, वो यहूदी अपने ही पिता के लहू के लिए चिल्ला रहे हैं, उनका अपना परमेश्वर वहाँ लटका हुआ है लहू बहाते हुए। देखिए वहाँ उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, बाइबल ने कहा ये वे 4 महान शब्द हैं। देखिए वहाँ यरूशलम परम पवित्र नगर संसार में, वे संसार के पवित्रतम लोग, क्रूस दी संसार की क्रूरतम मृत्यु, उसे संसार का सबसे अधिक विशिष्ट व्यक्ति, समझे। क्यों धर्मी लोग संसार का सबसे महान धर्म, संसार का केवल सच्चा धर्म वहाँ खड़ा हुआ था, अपनी बाइबल के ही परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, कहा कि वो आएगा, उन्होंने ये क्यों नहीं देखा। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया ताकि वे ये ना देख सकें। वे उसने कहा तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है, दूसरे शब्दों में यदि मैंने ठीक वही नहीं किया जो मेरे विषय में करने की भविष्यवाणी थी, तो फिर तुम मुझे बताओ पाप, अविश्वास। उसने ठीक वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा, परंतु वे ये ना देख सके। अब जब आप लोगों से बातें करते हैं ये ऐसा है जैसे बत्तख की पीठ पर पानी फेंकना। क्या आप देखते हैं कि मेरा क्या अर्थ है? ये दयनीय बात है जब आप इस राष्ट्र और लोगों को देखते हैं जिस प्रकार से वे करते हैं, इतना कठोर और धर्म। परंतु क्या पवित्र आत्मा हमें ये नहीं बताता? वे ढीठ, घमंडी, सुख के चाहने वाले बजाय परमेश्वर के प्रेम के, धोखेबाज, झूठा, दोष लगाने वाले, असंयमी और भले के बैरी। वे धर्मी का भेष तो धरेंगे परंतु सुसमाचार की सामर्थ का इनकार करेंगे। कहा, ऐसों से परे रहना। यहाँ हम हैं, इन नामधारियों ने इसे तोड़ मरोड़ दिया है। इन्होंने सारी महिमा और सामर्थ लेकर इसे पीछे चेलों के साथ रख दिया और बाकी शताब्दी में ये एक मनुष्य के समान, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक मनुष्य सदा परमेश्वर को महिमा देता है कि जो उसने पीछे कर दिया और सामने देख रहा है कि वो क्या करेगा और इस बात से अनभिज्ञ है कि वो अब क्या कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है, मनुष्य में अब भी वही बात है। वहाँ वे यहूदी खड़े हुए कह रहे थे, परमेश्वर की महिमा हो, क्यों? संत यूहन्ना का 6वां अध्याय, कहा, हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, और यीशु ने कहा, और उनमें से हर एक मारा गया, जंगल में उन्होंने चट्टान से पानी पिया और सब कुछ। उसने कहा, मैं चट्टान हूँ, ये ठीक बात है, आमीन। उसने कहा, परंतु जीवन की रोटी मैं हूँ, जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरी है, वो जीवन का वृक्ष वहाँ पीछे अदन की वाटिका से। यदि मनुष्य इस रोटी को खाएगा तो वो नहीं मरेगा, मैं उसे अंतिम दिनों में उठा खड़ा करूँगा, और फिर भी वे उसे ना देख सके, ये ठीक बात है। वही मसीहा वहाँ खड़ा हुआ उनके हृदयों की बातों को बोल रहा है और इस प्रकार की बातें दर्शा रहा है कि वो मसीहा था, वही जो मसीहा को करना था। और वे वहाँ अपने हाथ पीछे बांधे खड़े और ओ, ये नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, ये सही प्रवाह में नहीं आया। देखिए, वो बैतलहम से आया और वो कुछ नहीं परंतु एक अवैध बालक, और ये शैतान उसमें काम कर रहा है। हम जानते हैं वो पागल है, उसमें शैतान है, समझे? वास्तव में उनकी आंखें इसके लिए अंधी थी अब, परंतु वे अपने भविष्यद्वक्ता की राह देख रहे थे और वे इसे ग्रहण करने वाले थे। उनमें से दो को ग्रहण करने वाले थे, ये ठीक बात है। अब ध्यान दें, अब फिर से ये भी, जब यहूदी, मैं आपको एक और छोटा सा प्रतीक दूंगा ताकि आप ये अनुभव कर सकें। अब ये यहाँ यहूदी हैं, उठा लिए जाने के इस ओर, ध्यान दें क्या घटित हुआ। ये भी प्रतीकात्मक है, इसे करने के लिए हम समय नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ कर चुके हैं। प्रतीक में प्रस्तुत कर दिया है इसमें, जो कि याकूब का संकट कहलाता है। अब देखिए, ये यहाँ यहूदी हैं, ध्यान दें, ओ ये हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा समय लेने जा रहा हूँ, देखिए, ये मुझे अधीर कर देता है जब मैं इधर उधर छोड़ना आरंभ करता हूँ, और समझे, ध्यान दें, मैं चाहता हूँ कि आप इसे देख लें। मैं बस, अच्छा, परमेश्वर इसे आपको दिखा देगा, मैं निश्चित हूँ। देखिए, याकूब के पास जन्म सिद्ध अधिकार था, क्या ये ठीक है? परंतु निश्चय ही वो इसके साथ साथ छोटा धोखेबाज था, समझे? वो गया और उसने अपने पिता को धोखा दिया, उसने अपने भाई को धोखा दिया, उसने सब कुछ किया, परंतु फिर भी कानूनी तौर पर अंदर उसके पास ये था क्योंकि एसाव ने बेच दिया था। परंतु तब जब वो वहाँ अपने ससुर के लिए काम करने को जाता है, उसने वो पहाड़ी पीपल की छड़ियाँ जल में डाली कि गर्भ धारण किए पशुओं को बनाए और चित्तीदार बछड़े जन्माए। ओ, आप जानते हैं कि उसने हर चीज इस प्रकार से की केवल धन प्राप्ति के लिए। अब ध्यान दें, अब वो अपने लोगों में से निकाला हुआ था, अब ये यहूदियों का प्रतीक है, वो पैसा झपटने वाला। मैं चिंता नहीं करता वो इसे कैसे लेता है, वो इसे लेगा, वो जीते जी आपकी खाल उतार लेगा इसे पाने के लिए। अब आप ये जानते हैं, वो थोड़ा सा धोखेबाज था, बस लड़के उसके साथ वास्ता न रखना, लड़के वो तुम्हें ले लेगा। जी हाँ श्रीमान, क्यों? उसे ये होना ही है। इसी प्रकार की आत्मा जो प्रभुता कर रही है, ठीक उन सुधारकों के समान जो इस वचन को समझ न सके, क्योंकि वो मनुष्य का आत्मा उन पर भेजा गया। ये उकाब युग है जो वचन और प्रकाशन को लेता है। वे सब जो इसे समझते हैं अपने हाथों को उठाएं ताकि मैं ये बहुत अच्छा, ये बढ़िया है, समझे, ये अच्छा है। अब देखिए, यदि आप इन मोहरों के नीचे वापस आ सकते हैं, यदि वे कभी ले पाए, जब वे खुली, तब आप बिल्कुल ठीक प्रकार से देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, वो क्या करने जा रहा है। ये ठीक यहाँ पर है, और यही कारण है कि लोगों ने वैसा व्यवहार किया, क्योंकि उसी आत्मा की भविष्यवाणी उस युग के लिए की गई कि उन पर वो हो, और वे कुछ नहीं कर सकते थे। मैं यूहन्ना और पौलुस के लिए सोचता हूँ, और वे वहाँ सिंह का आत्मा था, वहाँ LION खड़ा था, स्वयं वचन, पौलुस ठीक वचन के साथ खड़ा हुआ और कहा, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे बीच में से झूठे भाई उठ खड़े होंगे चारों ओर और वे क्या बनाएंगे, नामधारी और हर चीज तुम्हारे बीच, और वे क्या करेंगे, और ये अंत के दिनों में होगा और कठिन समय। क्यों? वो एक भविष्यद्वक्ता था, वहाँ उसके अंदर वचन खड़ा था। ये कैसे समाप्त होगा? वहाँ पर कहा तुम्हारे बीच में से झूठे मनुष्य उठ खड़े होंगे और बातें कहेंगे और भाइयों को जो चेले हैं उन्हें अलग कर देंगे। ये ठीक मसीह विरोधी है, इसने ठीक यही किया। ध्यान दें, उनके अंधकार युग के क्लेश में चले जाने के पश्चात ये क्या था? वहाँ कुछ नहीं था जो वे कर सके। रोम ने ले लिया, उनके पास धर्म की शक्ति थी और उनके पास राजनीतिक सामर्थ्य थी। वे वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, केवल परिश्रम कि जीवित रहें और अपने आप को बलिदान के लिए दे दिया। ये एक बैल था, बस यही वे कर सके। उनके पास इसी प्रकार की आत्मा थी, परमेश्वर का आत्मा, बैल। तब यहाँ सुधारक आता है, मनुष्य का सिर, चालाक, बुद्धिमान, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली और आदि आदि, और वे बाकी कॉल्विन, फिनी, नॉक्स, और यहाँ वे आते हैं। जब उन्होंने किया, वे सुधारक थे, वे आए, सुधारा, लोगों को बाहर लाए और ठीक वापस घूमे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले किया, और सीधे वापस होकर विवाह कर लिया, फिर से वापस उसमें चले गए अपने नामधारी व्यवस्था में। ठीक सही बाइबल ने ऐसा कहा, वो एक वैश्या थी और तब उसके पास वैश्याएं, पुत्रियां, बिल्कुल ठीक वैसी। और परमेश्वर ने कहा, मैंने प्रायश्चित के लिए उसे समय दिया और उसने ये नहीं किया, इसलिए मैं उसको और उसके बालकों को लेने जा रहा हूँ, उन्हें वहीं डालूंगा जहाँ के वे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब उस परमेश्वर ने कहा, इसके नीचे देखिए, मोहर के नीचे। अब वहाँ वो थी, हम पाते हैं कि वो ये करता है और वो ये करेगा, और वे सारे के सारे उधर ही बढ़ रहे हैं। परंतु उनके लिए जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, परमेश्वर बुला लेगा, वे ये सुनेंगे, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। यीशु ने कहा, केवल एक चीज जो हमें करनी है कि भेड़ को बुलाएं, बकरी से नहीं जानती। ध्यान दें, परंतु आप देखते हैं, भेड़ की बुलाहट, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। क्यों? शब्द क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आवाज क्या है। आवाज एक आत्मिक चिन्ह है। उसने मूसा से कहा, यदि वे पहले चिन्ह की आवाज नहीं सुनेंगे, वे दूसरे चिन्ह की आवाज सुनेंगे। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। जबकि ये चिन्ह अंत के दिनों में घटित होने जा रहे हैं, परमेश्वर की भेड़ इसे पहचानती है। जी हाँ श्रीमान, समझे? वे इसे पहचानते हैं। मेरी भेड़ मुझे जानती है, समझे? अनजान के पीछे वे नहीं जाएंगी, अनजान के पीछे वे नहीं जाते। इस समय का प्रमाणित चिन्ह होना है और वे इसे देखते हैं। अब ध्यान दें, अब याकूब जैसे कि अब ऊपर आता है, पहली बात आप जानते हैं, उसमें जाने की एक चाहत थी, कहाँ? वापस अपने देश। और ठीक यही जो इसराइल ने किया, ये इसराइल है, याकूब इसराइल है, बस उसका नाम बदल गया था, आप जानते हैं, समझे? और वो वहाँ पहुँचा और उसने सारा पैसा ले लिया जो उसके पास था, जो वो ले सकता था, और वो जैसे भी ले सका अपने रिश्तेदारों से या किसी से भी। इसलिए बेमानी, चोरी, झूठ, किसी भी प्रकार से उसने ये ले लिया, समझे? उसने किया। और तब जब वो घर वापस जाने लगा, उसको हृदय में घर की याद सताने लगी। परंतु जैसे वापस जाने लगा, अपने मार्ग पर वापस जा रहा था, उसे परमेश्वर मिला, तब उसका नाम बदल गया, समझे? परंतु इस समय में वो इतना थका हुआ था कि वो डरा हुआ था, ऐसा उसके पीछे आ रहा था, समझे? और ध्यान दें, पैसे पर ध्यान दें, पैसों का प्रस्ताव, जैसे कि यहूदी अपनी वाचा रोम के साथ बांध रहा है। देखिए, उनके अपने पैसों के प्रस्ताव में, इस पर ध्यान दें, ऐसाव को उसका पैसा नहीं चाहिए था, न ही रोम को। उसके पास संसार का सारा धन उसके हाथ में है, समझे? परंतु इसने काम नहीं किया। परंतु अब हम पाते हैं कि इसराइल उस समय संकट में था, जब वो याकूब था, उसने संघर्ष किया, उसने उस चीज को पकड़ लिया जो कि वास्तविक था। वहाँ एक मनुष्य नीचे आया था, याकूब ने अपने हाथों से उसको घेर लिया और वो वहाँ रुक गया। और उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अब जाना चाहिए, ये उजाला हो रहा है। ओ, वो तो दिन निकल रहा था, समझे? दिन का निकलना तय था। परंतु याकूब ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू नहीं जा सकता, मैं तेरे ही साथ रुका रहूंगा, समझे। मैं चाहता हूं कि चीजें बदल जाएं। ये 144,000 है जो मुद्रा योजना वाला झुंड है, और इस प्रकार की चीज जब वे देखते हैं कि सच्ची वास्तविक चीज को पकड़ लें, वहाँ मूसा खड़ा है और वहाँ एलिया खड़ा है, आमीन, वे परमेश्वर के साथ संघर्ष करेंगे जब तक 144,000 इसराइल गोत्रों के वहाँ से बाहर ना बुला लिए जाएं। ये ठीक क्लेश के काल से पहले है। देखिए, ओ क्या ही शानदार, याकूब का क्लेश भी। यहाँ जब 144,000 बुलाए गए, वो प्रचारक, वे दो भविष्यद्वक्ता, वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान प्रचार करते हैं, स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रायश्चित कर इसराइल। प्रायश्चित किसका? अपने पापों से प्रायश्चित करो, अपने अविश्वास से, कि परमेश्वर की ओर वापस फिरो। अब आइए यहाँ कुछ याद करें। ये महान घटनाएं प्रकृति में पहले ही हो चुकी। यहाँ इस 12वें पद में, यहाँ पर सूर्य कंबल की नाई काला हो गया। अब इसकी तुलना करें। अब स्मरण रखें, ये अन्य जाति में घटित नहीं होता, ये इसराइल है। मैं आपको दिखाऊं। अब स्मरण रखें, मैंने कहा कि ये 144,000 की बुलाहट है, समझे। अब ये समय जब क्लेश होता है, जो कि इसे करना है, और ये बता रहा है कि इस क्लेश में क्या घटित होता है। अब आइए निर्गमन 10:21-23 को निकालें, और यहाँ ध्यान दें, जब निसंदेह इसराइल बाहर आ रहा था, निकाला जाने वाला था, निर्गमन 10वां अध्याय और 21वां-23वां पद। मैं उत्तेजित हो गया और चिल्ला रहा था जब मैंने ये टिप्पणियाँ लिखी, कि किसी और समय में मैं इन्हें इधर उधर मिला सकता हूँ। ठीक है, निर्गमन 10:21-23, ठीक है, हम यहाँ जाते हैं 21 और 23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। और मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा, समझे। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इसराइलियों के घर में उजियाला रहा। ध्यान दें, बिल्कुल सही। अब इधर को आएं, और सूर्य कंबल की नाई काला हो गया। देखिए वही चीज, ये प्रकृति की घटनाएं हैं। ये क्या था? क्या जब प्रकृति इस प्रकार हो जाती है, परमेश्वर इसराइल को बुला रहा है, समझे, परमेश्वर इसराइल को बुला रहा है। अब सूर्य बालों के समान काला है, अब परमेश्वर इसराइल को छुड़ाने वाला है, ठीक है, उन्हें शत्रुओं के हाथों से छुड़ा रहा है, जो कि उस समय मिस्र था। अब यहाँ वो उन्हें रोमियों के हाथ से छुड़ा रहा है, जहाँ इन्होंने अपनी वाचा बांधी, वही बात घटित होती है, वही चीज होती है। ये विपत्ति है, वो समय जब ये विपत्ति बुलाएगी, ये अन्य जाति के झुंड पर विपत्तियाँ लाएगी। यदि हमारे पास समय होता तो मैं आपको दिखा सकता था कि अन्य जाति कलीसिया के साथ क्या घटने जा रहा है। बाइबल ने कहा कि वो सांप शैतान क्रोधित था उस स्त्री से, यहूदी इसराइल, और उसने अपने मुंह से पानी निकाला घना, और लोगों की भीड़ जो बचे हुए स्त्री के वंश से युद्ध करने को गया, प्रकाशित वाक्य 13। अब देखिए, वहाँ वो हमारे पास है, और ये जब उसे भेजता है, मेरा अर्थ रोम अपनी सेना बचे हुए लोगों के पीछे भेजता है, स्त्री के वंश के बचे हुओं के पीछे। अब ध्यान दें, पहली बार उनके शत्रुओं के हाथों, जब वो उन्हें छुड़ा रहा था, सूर्य कंबल किनाई काला हो गया। अब ये दूसरी बार है, क्लेश काल का अंत। अब डैनियल 12वें में, यदि हमारे पास समय था, हम इसे पढ़ सकते थे। डैनियल में 12वां पद, बल्कि 12वां अध्याय, डैनियल ने कहा, हर कोई जो पुस्तक में लिखा हुआ पाया गया छुड़ा लिया जाएगा। अब स्मरण रखें, डैनियल अब इस काल के लिए बोल रहा है, जब ये बातें घटित होनी है, जब इसराइल को छुड़ाया जाना है, जब उनके 17वें सप्ताह का अंत होता है, और ये जब उन्हें छुड़ाया जाना है। अब देखिए, आइए हम ये डेनियल 12 को लें। एक मिनट। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, देखिए ये यहूदी हैं, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। अब इसकी तुलना करें, ठीक जो यीशु ने कहा, मती 24, विपत्ति का समय होगा जैसा कभी नहीं हुआ जब से जातियां उत्पन्न हुई। छठवीं मोहर को देखें, देखिए वही चीज, संकट का समय। ध्यान दें, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से, अब इस 17वें वर्ष का अंतिम भाग, जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, पहले से ठहराए हुए, आप देखते हैं, जिनके मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, उस समय छुड़ा लिए जाएंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। अब और तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। कि तब आगे बढ़कर डेनियल से कहा गया कि पुस्तक को बंद कर दे, क्योंकि वो उस समय तक अपने भाग में विश्राम करेगा। अब देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता चाहे आप जीवित रहें या मर जाएं, जो भी हो आप आएंगे, समझे? नहीं, वो मरना मसीह के लिए कुछ नहीं है, वो नहीं मरता, जो भी है, समझे? अब डेनियल 12 ने कहा कि हरेक जो इस पुस्तक में लिखा हुआ पाया गया छुड़ा लिया जाएगा। यहाँ परमेश्वर अपने दूसरे पुत्र को छुड़ाने पर है, इसराइल, क्लेशों के बाद। देखिए, दूसरी बार इसराइल, इसराइल उसका पुत्र है, आप ये जानते हैं, इसराइल परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो इसे इस संकट काल से छुड़ाने जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से जैसा उसने मिस्र में किया। अब आइए यहाँ रुकते हैं फिर से और कुछ और लेते हैं, ताकि पहले की इसे घर ले जाएं। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये दोनों भविष्यद्वक्ता, देखें कि वे क्या करने जा रहे हैं। अब जैसा कि मूसा और उन्होंने वहाँ किया, और वहाँ मुझे एक सरकंडा दिया गया, और तीसरा पद 11वें अध्याय का, मैं अपने दो गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के दो पेड़, आपको याद है कि, और जरूबाबेल और आदि आदि को फिर से मंदिर बनाना था, और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुख से आग निकलकर, याद रखें, मसीह के मुख से वचन की तलवार निकलती है, उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। अब हम जानते हैं कि आग 19वें अध्याय में मसीह के आगमन का, उसकी तलवार उसके मुख से निकलती है जो कि वचन था। क्या ये ठीक है? वचन, ओ यदि आप अब ये चीजें लेनेंगे उस कल रात की मोहर के लिए। देखिए, वचन वो चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने शत्रु को मार डालता है, समझे? अब यहाँ देखें, अब ये दो नबी वहाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं, वे यदि कोई मनुष्य उनसे दुर्व्यवहार करता है, उन्हें हानि पहुँचाता है, आग उनके मुख से निकलती है, पवित्र आत्मा की आग, वो वचन, वचन परमेश्वर है, वचन आग है, वचन आत्मा है, समझे? उनके मुख से निकलती है। मूसा को देखिए, देखते हैं उसके मुंह से क्या निकलता है, वे इजरायली, उसी प्रकार होना है जैसे वे वहाँ कर रहे थे, वो मेरा अर्थ मिस्र में वे उन यहूदियों से दुर्व्यवहार कर रहे थे, मूसा, ठीक है, वे उन्हें नहीं जाने देंगे, फिरौन नहीं चाहेगा, परमेश्वर ने मूसा के मुंह में वचन डाले। देखिए, ये परमेश्वर के विचार मूसा के हृदय में जा रहे हैं, वो इसे वहाँ प्रकट करने जा रहा है, तब ये वचन हो जाते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बोला मक्खियाँ हो जाएं, और यहाँ मक्खियाँ आती हैं। इधर देखिए, और यदि कोई उनको हानि पहुँचाना चाहता है तो उनके मुख से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्म करती है, समझे? यही है, वे जो चाहे बोल सकते हैं, और वहाँ ये होता है, आमीन। और यदि कोई मनुष्य उन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। भाई, परमेश्वर यहाँ दृश्य में विराजमान है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे। एलिया ये जानता है कि ये कैसे करना है, उसने ये पहले भी किया है, आमीन। मूसा जानता है कि कैसे करना है, वो ये पहले कर चुका, यही कारण है कि उन्हें पीछे रख रखा था। अब आमीन, मैं यहाँ कुछ विस्मयकारी अच्छी बात कह सकता हूँ, परंतु मैं अच्छा हो इसे कल रात्रि तक रोके रहूं, समझे? ठीक है। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। ये क्या है? इन चीजों को कौन ला सकता है? केवल वचन। वे जैसा चाहें प्रकृति के साथ वैसा कर सकते हैं। ये यहाँ है। ये वे थे जो छठवीं मोहर को ला सकते हैं। वे इसे उघाड़ और खोल सकते हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो प्रकृति में विघ्न उत्पन्न कर सकती है। देखिए, छठवीं मोहर पूरी रीति से प्रकृति में विघ्न उत्पन्न करना है। अब क्या आप समझे? यहाँ आपकी मोहर है। ये कौन करता है? ये भविष्यद्वक्ता है। उठा लिए जाने के बाद परमेश्वर की सामर्थ और वचन के साथ वे प्रकृति को दंडाज्ञा देते हैं। वे भूकंप ला सकते हैं, चांद को लहू में बदल सकते हैं, सूर्य डूब सकता है या कुछ भी उनकी आज्ञा से। आमीन। आप वही हैं। समझे? देखिए मोहरे कैसे खुली वहाँ कलीसिया युग में, कैसे इसने शहीदों को दर्शाया और यहाँ कैसे ये दो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन के साथ खड़े हैं, प्रकृति के साथ, चाहे जो करें वे पृथ्वी को हिलाते हैं। ये दर्शाते हैं कि सही में ये कौन करता है। ये मूसा और एलिया है, क्योंकि वहाँ इनकी सेवकाई है कि फिर से रूप धारण करें ये दोनों मनुष्य। ओह प्रभु, क्या अब आप ये देखते हैं? देखिए छठी मोहर क्या है? ये वे नबी हैं। अब ध्यान दें, ये आपको भयभीत ना करे, परंतु ध्यान दें, मोहर को क्या चीज खोलती है? भविष्यद्वक्ता, समझे? आमीन। आप वही हैं। ओ, हम उकाब के दिनों में रह रहे हैं भाई, बादलों के बीच उठ रहे हैं। उन्होंने छठी मोहर खोली, ये करने के लिए उनके पास सामर्थ है। आमीन। यहाँ आपकी छठी मोहर खुलती जा रही है, समझे? अब हम यहाँ थोड़ा पहले रुकते हैं और यीशु ने कहा कि ये घटित होगा। वहाँ पीछे पुराने नियम में, पीछे हिस्केल में, पुराने भविष्यद्वक्ताओं में उन्होंने बोला कि ये घटित होगा और यहाँ छठवीं मोहर खुल गई और वे कहते हैं ठीक है, ये भेद भरी बात है। इसने क्या किया? यहाँ इसका भेद है, वे नबी, क्योंकि बाइबल ने यहाँ ऐसा कहा है। वे इसे किसी भी समय खोल सकते हैं, वे, और वे जो चाहें प्रकृति के साथ कर सकते हैं और वे वही चीज करते हैं जो उन्होंने पहले किया। आमीन। क्योंकि वे जानते हैं ये कैसे किया गया। आमीन। महिमा हो। जब मैंने ये देखा मैं बस कुर्सी पर से खड़ा हो गया और फर्श पर चहलकदमी करने लगा। मैंने सोचा, प्रभु मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, स्वर्गीय पिता। ये यहाँ है, ये यही है। उन्होंने वह छठवीं मोहर खोली। आमीन। उन पर ध्यान दें, यदि कोई मनुष्य उन्हें हानि पहुंचाता है तो आग उनके मुख से निकलती है। वो वचन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आता है, आप देखते हैं आग उनके मुख से निकलती है। प्रकाशित वाक्य 19 पर ध्यान दें, हम उन्हीं बातों को देखते हैं और एक बड़ी तलवार उसके मुख से निकलती है, वचन, समझे? मसीह का आगमन, और वो अपने शत्रुओं को इससे घात करता है। क्या ये ठीक बात है? अब वो अपने मार्ग पर है। अब उस पर ध्यान दें, ठीक है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे। लड़के, ये प्रकृति को रोकना है। अब इस मनुष्य ने कितने समय तक ये किया? एलिया ने आकाश बंद किया। आप ठीक यहीं पर हैं। डेनियल का सप्ताह कितना लंबा है? 70वें सप्ताह का अंतिम भाग। आप ठीक वहीं पर हैं। मूसा ने क्या किया? उसने पानी को लहू में बदल दिया। उसने इस प्रकार के आश्चर्य कर्म किए, ठीक वैसे ही जैसे इस छठवीं मोहर के नीचे भविष्यवाणी हुई। और यहाँ ये प्रकाशित वाक्य 11 में है, ठीक उन्हीं चीजों को कर रहा है। आमीन। वचनों में तीन विभिन्न स्थान हैं, ठीक वहाँ जो चीजों को एक साथ मिलाते हैं। ये छठवीं मोहर का खुलना, ये ठीक वहाँ पर है। आमीन। महिमा हो। अब ध्यान दें, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, उनकी भविष्यवाणी के दिनों में कि वर्षा ना हो, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। ओ प्रभु, आप वहीं पर हैं। अब सीधे यहाँ विपत्तियों पर आएं। देखिए, सारी प्रकृति इस छठवीं विपत्ति में रुकावट में है, यानी छठवीं मोहर के खुलने में। ठीक यही जो घटित हुआ। अब देखिए, यहाँ अब परमेश्वर अपने पुत्र को छुड़ाने पर है, इज़राइल को, उसी प्रकार के कष्टों में से जो वहाँ पर किए गए। उसने मूसा को वहाँ भेजा और इज़राइल को छुड़ा लिया। क्या ये ठीक बात है? और उसने वही चीजें की। उसने एलिया को अहाब के पास भेजा और 7,000 निकल आए, ठीक बात है ना? उसने उन्हें वहीं वापस भेजा उस विपत्ति के समय और 144,000 को बाहर बुला लिया। अब देखिए, आप ध्यान दें, प्रकाशित के बीच यानी छठवें अध्याय या छठवीं विपत्ति के बीच मोहर के, मुझे क्षमा करें, छठवीं मोहर और सातवीं मोहर के बीच में प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय गणना के हिसाब से यहाँ ठीक बैठा हुआ है। जैसा कि अमेरिका नंबर 13 है, ये 13 राज्यों से आरंभ हुआ, झंडे में 13 सितारे, 13 बसावटें, 13 धारियां, हर चीज 13-13 और ठीक यहाँ प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में प्रकट हुआ। ये ठीक बात है, ये 13 है और एक स्त्री। अब जब वो अपने इकलौते पुत्र को छुड़ाने पर था, जो कि उसका इकलौता पुत्र था, याकूब अपने पुत्र में, परंतु ये केवल उसका इकलौता पुत्र है। मत्ती 27, आइए देखें उसने वहाँ क्या किया। मत्ती 27वां अध्याय, अब स्मरण रखें, उसका पुत्र पीटा गया और उसे कष्ट दिया गया था और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था और अब वो क्रूस पर लटका हुआ था। गुड फ्राइडे दोपहर बाद 3 बजे घटित होने पर था। मत्ती 27वां अध्याय मत्ती का और 45वां पद, मैं विश्वास करता हूँ यही है। अब 6वें घंटे से लेकर 9वें घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। अब ध्यान दें, ठीक वही जो पीछे उसने वहाँ किया इसमें, समझे? और देखो, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और चांद और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। कालापन, अंधकार, मिस्र, काला, अंधकार। परमेश्वर यीशु को क्रूस पर से छुड़ा रहा है, ठीक पुनरुत्थान में उठाने से पहले। पहले अंधकार, सूरज बीच दिन में डूब गया और सितारे नहीं चमके, तब से 2 दिन वो उसे बड़ी विजय के साथ जी उठाने वाला था। सूरज और चांद और सितारे और हर चीज, मिस्र में ये सब घटित हुआ। उसने इसराइल को प्रतिज्ञा के देश के लिए छुड़ाया, ये यहाँ इस क्लेश के समय में, और यहाँ ये नबी खड़े हैं जिनके अधिकार में वचन है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया। वे केवल उतना बोल सकते हैं जैसा वचन परमेश्वर उन्हें देता है। अब वे ईश्वर नहीं है, वे अस्थाई कच्चे वे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा वे थे, कहा तुमने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन आया। परंतु देखिए, ये हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और जब वो बोलता है ये घटित होता है, बस। और यहाँ वो परमेश्वर के प्राधिकार के साथ है कि पृथ्वी पर विपत्ति लाए, वो जो भी चाहे, ओ आकाश को रोक दे, और वो करता है। क्या मामला है? वो 144,000 को निकालने के लिए तैयार है, छुटकारे के लिए, उस छुटकारे की पुस्तक से। और ये छुटकारे की मोहर के नीचे 6वीं मोहर में, यही है मेरे प्रिय मित्र, यही 6वीं मोहर है, बहुत ही भेद भरा है। आइए जरा इसे लें, हमारे पास 10 मिनट और हैं, आइए थोड़ा सा लेते हैं। देखिए, मेरे पास 2-3 पन्ने और हैं। अच्छा, मेरे पास, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं सोचता हूँ वहाँ लगभग, उस पर मैं सोचता हूँ मेरे पास लगभग 15 पृष्ठ हैं जो अभी बचे हैं, मैं ला सकता हूँ। ओ, इस पर इतना है। ओ, आप एक दूसरी जगह से चलते रहेंगे, परंतु मुझे डर है कि आप भ्रमित हो जाएंगे। अब मैं इसे विस्तार से लूंगा, और मैं नहीं, मैं इसे सीमित रख सकता हूँ जैसे कि मुझे चाहिए। यशाया में, आइए इसे लें, यशाया भविष्यद्वक्ता ने इस 6वीं मोहर को खुलते देखा और इसके लिए बोला, जैसा ये विशेष है या नहीं, समझे? ठीक सारा मामला, छुटकारे की सारी योजना इन मोहरों के नीचे है, सारी पुस्तक। अब याद रखें, हमने देखा, यीशु ने ये देखा, क्या ये ठीक बात है, समझे? यीशु ने ये देखा, और अब हम पाते हैं दूसरे जिन्होंने ये देखा, हम पाते हैं इसका प्रतीक याकूब में, हम पाते हैं इसका प्रतीक वहाँ मिस्र में, हम ये पाते हैं इसका प्रतीक वहाँ क्रूस पर। अब आइए वापस यशाया पर चलते हैं, मेरे पास बहुत सारा है, बहुत से भविष्यवक्ता यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चलिए जरा सा, मुझे ये पसंद है, ये यशाया का है, आइए यशाया पर वापस चलते हैं। यशाया का 13वां अध्याय मुझे पसंद है, यशाया अपने में पूरी बाइबल है, आप जानते हैं, क्या ये आपको मालूम है? देखिए, यशाया सृष्टि से आरंभ होता है, पुस्तक के बीच में वो यहूना को लाता है और अंत में वो सहस्र शताब्दी को लाता है, और वहाँ 66 पुस्तकें बाइबल में है, और यशाया में 66 अध्याय हैं। ये पूरा अपने में एक विश्वकोश है। ध्यान दें, अब 13वां अध्याय यशायाह का, आइए इसे 6वें पद से आरंभ करें। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वो सर्व शक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। ध्यान दें, ये 6वीं मोहर अब यहाँ खुल रही है, यहाँ पीछे मसीह के आगमन से 713 वर्ष पहले, और वो 2000 वर्ष, ये लगभग 7 के होगा, लगभग 2700 वर्षों पहले यशायाह ने इस मोहर को वहाँ पर लटके देखा। ठीक है, इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हरेक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। यीशु ने क्या कहा? और दुष्टता की भरपूरी के कारण बहुत सों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और मनुष्यों के हृदय भय से थम जाएंगे। समुद्र की गर्जना से देखिए, मनुष्य का हृदय मूर्छित हो जाएगा और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी और वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे और उनके मुंह जल जाएंगे। अब इस पद पर ध्यान दें, ओ उनके मुख एक लज्जा, एक मिनट, हमें इसको लेना है, मैं इसको लेने जा रहा हूँ। देखिए, देखो यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है, वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। वो देश, इसका यही सब कुछ है, इसका आप देखिए, ध्यान दें, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और उनके अभिमान, मैं नहीं जानता कि अक्षर विन्यास कैसे करूं, मैं इसे नहीं बोल सकता, अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। वहाँ देखिए, ठीक वैसे ही यशायाह ने भी वही चीज देखी जिसके लिए यीशु ने बोला, जो कि 7वीं मोहर प्रकट करती है, जब वो देश को क्लेश से शुद्ध करता है। ये क्लेश का समय है, ये 6वीं मोहर। जी हाँ, वो एक भविष्यद्वक्ता था और परमेश्वर का वचन उसे मालूम था, ये 2700 वर्षों पहले। सच में मैं ये कहना चाहता हूँ, सारा संसार, जैसे यशायाह यहाँ पर है, जैसे एक स्त्री जच्चा पीड़ा में सारी सृष्टि कह रही है, ये सारा करहाना क्या है और कष्ट, जैसे एक 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 स्त्री जो माँ बनने वाली है, पृथ्वी स्वयं में प्रकृति, क्यों ये नगर यहाँ पर है। आइए अपने ही नगर को लें, जब मद्यपान और वैश्यवृत्ति और गंदगी और कचरा जैसे किसी नगर में, क्यों मैं विश्वास करता हूँ अच्छा हो कि परमेश्वर इसे इस प्रकार से देख रहा है जैसा देखा था हजार वर्षों पहले, जब ओहियो कष्ट में था, उनके पास समुद्र से वापस लौटने वाला पानी और बाढ़ नहीं था, जब घाटी में कोई पाप नहीं था, भैंसे यहाँ घूमा करती थीं और पुराने आदिवासी चोर की उनका शिकार करके अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, तब कोई भी कष्ट नहीं था। परंतु जब मनुष्य आता है तो पाप भी आता है, जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे तब पाप और उपद्रव आ जाता है। ये ठीक बात है, मनुष्य सदा, क्यों मैं सोचता हूँ ये कलंक है। उस दिन मैं खड़ा हुआ था वहाँ अपने गांव के घर पर, जब एरिजोना, और मैंने पढ़ा, जब मैं एक बालक सा था, जेरिमोनो और कोचाइस और वे पुराने आदिवासी, क्योंकि मैंने उन्हें प्रचार किया वहाँ, वे अच्छे लोग हैं और कुछ बहुत अच्छे लोग जिनसे आप मिलना चाहेंगे, और वे आदिवासी इंडियंस। तब मैं वहाँ ऊपर गया उनके कब्र के टोम पर, जहाँ वे उनके पास युद्ध की पुरानी चीजें थी, और मैंने उन्हें देखा। आप जानते हैं, वे सदा जेरेनीमो को एक विश्वासी घाती वर्ग में रखते हैं। मेरे लिए ये सदा लाल लहू वाले अमेरिकन हैं। बिल्कुल, वो केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जैसा कि कोई भी करेगा। वो अपने देश में गंदगी नहीं चाहता, और देखिए अब क्या है, अपने बालकों को, लड़कियों को वैश्यवृत्ति में बदल रहे हैं और सब कुछ, और श्वेत मनुष्य वहाँ पर आता है, श्वेत मनुष्य एक बदमाश है। इंडियन रूढ़ीवादी थे, वो एक रूढ़ीवादी था। वो बाहर जाकर एक भैंसा मारेगा, सारे आदिवासी जनता हर चीज खाएगी जो उसमें से बचता था। वे उसकी खाल, वस्त्र और तंबुओं के लिए उपयोग करते थे और हर चीज, और श्वेत मनुष्य आकर उसे गोली मारता था केवल निशानेबाजी के लिए। क्यों? ये एक कलंक है। मैंने अखबार में एक लेख पढ़ा था जहां अफ्रीका में ये महान स्थान जंगल के शिकार के खेल से भरा पड़ा है। उनके पास ये लोग हैं, आर्थर गॉडफ्रे, और वे वहां जा रहे हैं उन हाथियों आदि को हेलीकॉप्टर से मारने को और इस प्रकार की चीजें। एक चित्र मादा हथनी का जो मरने का यत्न कर रही थी और आंसू जैसे उसके मुंह उदास हो, और दो बड़े नर उसे रोके रखने का यत्न कर रहे थे ताकि जीवित। क्यों? ये एक पाप है, ये शिकार का खेल नहीं है। जब मैं वहाँ बाहर मैदान में खड़ा था और जहाँ मैंने इस प्रकार की चीजों का शिकार किया, और देखें जहाँ वे श्वेत शिकारी वहाँ पहुँचते हैं और उन हिरणों को गोली मारते हैं और उसकी एक जांघ काट लेते हैं, और कभी कभी 8 या 10 हिरणियों को मार डालते हैं और उन्हें वहीं पड़ा रहने देते हैं, और हिरण के बच्चे अपनी माओ को ढूंढते फिरते हैं, और आपका अर्थ ये खिलाड़ीपन है? ये पूरी रीति से मेरी पुस्तक में हत्या करना है। मैं आशा करता हूं कि कनाडा को कभी भी इसका कोई मार्ग नहीं मिलेगा जब तक मैं जीवित हूं कि उन अमेरिकनों आवाराओं को वहां से अलग रखे। ये ठीक बात है, ये सबसे भद्दा शिकार का खेल जो कभी मैंने अपने जीवन में देखा। अब वे सारे उनमें से कुछ वास्तविक सही पुरुष हैं, परंतु ये हजारों में से एक आप पाएंगे। कोई भी चीज उन्हें दिखती है, वे गोली चला सकते हैं कैसे भी जो वो चाहते हैं। ये ठीक बात है, ये हत्या करना है, ये ठीक बात है। वो हृदय विहीन है, वो बिना मौसम के गोली चलाता है। अच्छा, वहाँ अलास्का में मैं वहाँ उनमें से एक मार्गदर्शक के साथ था। उसने कहा, मैंने लिया, अब मैं बाहर जाऊंगा, बड़ा सारा उन बड़े एल्कों का झुंड, या एल्क नहीं परंतु मूज वहाँ पर हैं। उस 50 कैलिबर की मशीन गन की गोलियाँ उनके सींगों के बीच में, जहाँ ये अमेरिकन जहाज उड़ाने वाले अलास्का में अपने जहाज से मशीन गन की गोलियाँ बरसाते हैं एक मूज के झुंड पर। ये पूरी रीति से हत्या करना है। उन्हें मालूम है जब कभी वे भैंसे को मारते हैं वे इंडियनों को ले सकते हैं, वे भूखे मर जाएंगे। यही कारण है कि वो चाइजों को समर्पण करना पड़ा, उसको, उसके सारे राजकुमारों को और उन बाकी को सबको, उनके बालकों और उसके सारे लोग भूखे मर रहे थे। वे वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ जाते हैं भैंस वाले, और वे मैदानी लोग, और उन सारे भैंसों को गोली से मार डालते हैं एक दोपहर बाद में 40-50। वे जानते हैं कि जब वे उन्हें मिटा देंगे तो वे इंडियंस से भी पीछा छुड़ा लेंगे। ओह प्रभु, ये झंडे पर एक दाग है जिस प्रकार वे इंडियनों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आप उसी स्थिति में हैं, परंतु स्मरण रखें, बाइबल ने कहा कि वो घड़ी आती है, परमेश्वर उनको नाश करेगा जो पृथ्वी का नाश करते हैं और समस्त संसार को। उन घाटियों को देखें, मैं वहाँ खड़ा हुआ था उस दिन, वहाँ फीनिक्स की उस घाटी को देख रहा था। दक्षिण के पहाड़ पर चला गया, पत्नी और मैं वहाँ पर बैठे हुए थे और नीचे फीनिक्स की ओर देखा। मैंने कहा, क्या ये भयानक नहीं? वो बोली, भयानक, आपका क्या अर्थ है? मैंने कहा, पाप और कितना व्यभिचार और पीना और कोसना और प्रभु का नाम इस घाटी में वहाँ व्यर्थ लिया गया। इन 140-150 हजार लोगों में, या हो सकता है 2 लाख लोग इस घाटी में। मैंने कहा, 500 या 1000 वर्षों पहले वहाँ कुछ नहीं था सिवाय कैक्टस, कटीली झाड़ियाँ और अमेरिकन भेड़िए ऊपर नीचे भागते फिरते थे और नदी के किनारे रेत में और नहाते। और मैंने कहा, परमेश्वर ने इसी प्रकार से इसे बनाया था। परंतु मनुष्य आया, उसने क्या किया? उसने भूमि को गंदगी से भर दिया, गालियाँ लज्जा से भरी है, नाले और नदियाँ गंदगी से दूषित हैं, वे नहीं सकते। क्यों? अच्छा हो कि तुम उसका एक घूंट पानी ना पियो, तुम कुछ भी ले लोगे, समझे? इसे देखें, केवल यही नहीं परंतु सारे संसार में चीजें दूषित हो गई हैं। और संसार, प्रकृति, परमेश्वर दया करे, सारे संसार का और प्रसव पीड़ाओं में संसार यत्न कर रहा है, वो पीड़ा में है। यशाया ने कहा, क्या मामला है? वो नए संसार को लाने के यत्न में है, सिर्फ शताब्दी के लिए, जहाँ की सब नए संसार को जन्म देने के यत्न में, नए लोगों के लिए जो पाप नहीं करेंगे और इसे दूषित नहीं करेंगे। ये ठीक बात है, ये पीड़ा में है। यही कारण है कि हम पीड़ा में हैं। मसीह दुल्हन को लाता है, हर चीज पीड़ा में और कराहती है। देखिए, कुछ घटित होने के लिए तय है और ये छठवां क्लेश इसे जाने दे। भाई, भूचाल फूट पड़ा और तारे हिले, ज्वालामुखी आएगा, पृथ्वी स्वयं को फिर से नया करेगी, पृथ्वी के बीच में से नया लावा बाहर आएगा और वो चारों ओर से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जब वो अपनी कीली पर वहाँ घूमती है। और मैं आपको बताता हूँ, एक प्रातः है जब यीशु और उसकी दुल्हन वापस पृथ्वी पर आएंगे, वहाँ परमेश्वर का स्वर्ग लोक होगा। वो ओ प्रभु, वे युद्ध के पुराने योद्धा वहाँ से अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ वहाँ टहलते हैं। स्वर्गीय सेना के गायन से हवा का वातावरण भर जाएगा। ओ, ये बहुत ही बढ़िया किया मेरे अच्छे और ईमानदार दास। प्रभु के आनंद में प्रवेश कर, जो कि तेरे लिए तैयार किया गया है, जैसा कि तुझे मिलना चाहिए था। वहाँ इसके पहले कि हवा ने पाप की गेंद को लुढ़काना आरंभ किया। आमीन। जी हाँ, छठवीं मोहर कुछ करने जा रही है। जी हाँ श्रीमान, सच में सारा संसार तड़प रहा और पीड़ा में है उस श्रेष्ठ शताब्दी के युग के लिए। अब वो जो गंदगी से इतना भर गया है, जिसे कि अधिक समय नहीं हुआ मैंने प्रचार किया, मैं विश्वास करता हूँ यहाँ आराधनालय में संसार गिर रहा है। ठीक यही देखिए, संसार में क्या गिर रहा है, देखिए इसकी हर चीज गिर रही है। निश्चय ही ये है, इसे गिरना ही है। जी हाँ श्रीमान, इसका ढांचा देखिए, मैं आपको इसका कारण दिखाऊं कि संसार को ये करना है। लोहा और पीतल और इस संसार के पदार्थ इसमें से निकाल लिए गए हैं, इसके ढांचे की बनावट में से, युद्ध और उद्योग के लिए, जब तक के लिए ये लगभग तैयार ना हो। अच्छा, अब उस दिन हमारे यहाँ कभी भी भूचाल नहीं था, यहाँ देश के इस भाग में। उस दिन ये यहाँ पर था। अब देखिए संत लुईस और वहाँ नीचे होते हुए, वो इतनी हल्की हो रही है, उन्होंने इसमें से सब कुछ निकाल लिया, समझे। इसकी राजनीति इतनी दूषित हो गई है, उनके बीच में कठिनता से कोई ईमानदार है। देखिए इसकी व्यवस्था, इसका आचरण इतना गिरा हुआ है कि इसमें कोई नहीं है। कुल मिलाकर ये है, समझे, निश्चय ही इसका धर्म सड़ गया है। जी हाँ श्रीमान, ये छठवीं मोहर का समय है, जल्दी ही खुलने वाली है। और जब ये होता है, ओ प्रभु, ये अंत है। दुल्हन जा चुकी है, उसने कर दिया, रानी कर चुकी और अपना स्थान लेने चली गई। अब उसका विवाह राजा से हो चुका, जबकि ये चल रहा है और इसराइल के बचे हुए मोहर बंद हो गए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। और तब प्रगति, चलिए चलते हैं। ओ क्या ही समय है। ध्यान दें, छठवीं मोहर का अंतिम पद खुल गया। वे जो वचन के प्रचार पर हंसे हैं, जीवित परमेश्वर के प्रमाणित वचन पर, जब वे भविष्यद्वक्ता वहाँ खड़े हैं और आश्चर्यकर्म कर चुके, सूर्य को बंद कर दिया और सब कुछ, और सारे युगों से होते हुए, देखिए वे चट्टानों और पहाड़ों से चिल्लाए कि उन्हें छिपा ले। देखिए उन्हें वचन से छिपा ले जिस पर वे हंसे, क्योंकि उन्होंने उसे आते देखा। हमें मेमने के प्रकोप से छिपा लो, वो वचन है, समझे। वे वचन पर हंसे थे और यहाँ वचन अवतरित हुआ और उन्होंने उसका उपहास उड़ाया था। उन पर हंसे और उनका उपहास उड़ाया और अवतरित वचन गिरा दिया गया। उन्होंने क्यों नहीं प्रायश्चित किया, वे नहीं कर सके, ये बहुत दूर हो गया था। इसलिए वे दंड को जान गए, उन्होंने इसे सुना, वे सभाओं में इस प्रकार बैठे और इस विषय में जाना, और वे जान गए कि उन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की भविष्यवाणी की गई और ठीक सामने देख रहे थे। वे बातें जिनको उन्होंने अस्वीकार किया था, उन्होंने अनुग्रह को अंतिम बार ठुकरा दिया। और जब आप अनुग्रह को ठुकराते हैं, तो फिर कुछ नहीं बचता सिवाय न्याय के। जब आप अनुग्रह को ठुकराते हैं, तो इस पर विचार करें। और वहाँ वे थे, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, कोई वापसी नहीं। यहाँ बाइबल ने कहा, उन्होंने पुकारा, चट्टानों और पहाड़ों से चिल्लाए, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुख और मेमने के क्रोध से छिपा लो। उन्होंने प्रायश्चित का यत्न किया, परंतु मेमना अपनों का दावा करने आ गया। देखिए, और वे चट्टानों और पहाड़ों से चिल्लाए, प्रार्थना की, परंतु प्रार्थनाओं के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मेरे भाई बहन, परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह लोगों के लिए बढ़ाया गया, जबकि इसराइल इसके लिए अंधा था, यहाँ के लिए 2000 वर्षों के लगभग, कि हमें अवसर दे कि प्रायश्चित करें। क्या आपने उस अनुग्रह को ठुकरा दिया? क्या आपने इसे अस्वीकार कर दिया? जो भी हो, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। आप ये डॉक्टर से नहीं पूछ सके, आप संसार में किसी से नहीं पूछ सके, और कोई पुस्तक नहीं कि आपको पढ़ सको जो बता सके कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, सिवाय इस पुस्तक के। आप जानते हैं मेमने के लहू को बिना लिए कि आपके स्थान पर कार्य करे, आप देखिए आप कहाँ बढ़ गए हैं। इसलिए यदि परमेश्वर ने ये आपके लिए किया, अंतिम चीज जो हम कर सके उसे ग्रहण करेंगे जो उसने किया। केवल इतना ही उसने हमसे करने को कहा, और इसके आधार पर यदि मैं कहीं आगे बढ़ूं, मुझे ठीक क्लेशों में आना पड़ेगा इस सारे में। कल रात्रि की सभा और अब मैं इसे नहीं कर सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने यहाँ कटम का निशान लगा दिया, यहाँ रुक जाओ, देखिए। इसलिए तब मुझे कल तक के लिए प्रतीक्षा करनी है। अब आइए अपने सिरों को एक घड़ी के लिए झुकाएं। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप नहीं हैं, आपने इस परमेश्वर का प्रेम स्वीकार नहीं किया है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ, नहीं है। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। यदि आपने उसका प्रेम और अनुग्रह स्वीकार नहीं किया है तो आपको उसके न्याय और क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब आज रात्रि आप ठीक उसी स्थान में हैं जहां आदम और हवा अदन की वाटिका में थे। आपके पास अधिकार है, आप स्वतंत्र इच्छा में हैं। आप जीवन के वृक्ष के पास जा सकते हैं या आप न्याय की योजना को ले सकते हैं। परंतु आज जबकि आप अपने सही मनोस्थिति में संवेदनशील हैं और आप इतने स्वस्थ हैं कि खड़े होकर इसे स्वीकार कर लें, तो आप क्यों नहीं कर लेते यदि आपने ये नहीं किया है? क्या यहाँ पर वे लोग हैं जिन्होंने ये अभी तक नहीं किया है? यदि ये ऐसा है, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे, कहें भाई ब्रणम मेरे लिए प्रार्थना करें, अब मैं ये करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये आए। मित्रों, अब याद रखें, परमेश्वर आपको आशीष दे, ये अच्छा है। मैं इसके लिए, ये मेरे विचार नहीं है, मैं ये वो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, ये सब मिलकर मुझ में से है, इसलिए मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा ये जानता है, और आप प्रतीक्षा करें। यदि प्रभु ने चाहा, कल आने वाली रात्रि मैं आपको ये भेद दिखाना चाहता हूँ जो इस सारे समय इस सभा में चल रहा है। मुझे इस बात का बहुत संदेह है कि आपने इसे कभी देखा है या नहीं। देखिए क्या क्या घटित हुआ, ये कुछ ऐसा रहा कि ये ठीक यहाँ आपके सामने है, और मैंने हर रात्रि इस पर ध्यान दिया है कि ये उठे, कि कोई कहे मैं ये देखता हूँ, समझे। कृपया इसको अस्वीकार ना करें। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप एक मसीह नहीं हैं, यदि आप लहू के नीचे नहीं हैं, यदि आपने नया जन्म नहीं पाया है पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यदि आपने सार्वजनिक रूप में यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है उसके नाम में बपतिस्मा लेने के द्वारा, कि उसकी मृत्यु और गाड़े जाने और पुनरुत्थान की गवाही दें कि आपने स्वीकार कर लिया है, जल तैयार है, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ वस्त्र मिल जाते हैं और हर चीज तैयार है। मसीह अपनी फैली हुई बाहों के साथ तैयार खड़ा है कि आपको अपना ले। अब से एक घंटे बाद हो सकता है आपको अनुग्रह ना मिले, आप इसे अंतिम बार अस्वीकार कर रहे हों, ये आपके हृदय को फिर दोबारा कभी ना छुए। जबकि आप सकते हैं आप क्यों नहीं करते? अब जबकि मैं नियमित रिवाजों वाली विधि जानता हूँ कि आपको वेदी पर ले आऊं, हम ये करते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। इस समय हम यहाँ ऐसी भीड़ है यहाँ वेदी के चारों ओर, यहाँ तक कि मैं इसे नहीं कर सका। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, प्रेरितों के दिनों में वे कहते हैं जितनों ने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया था, समझे। बस यदि आप वास्तव में अपने हृदय की गहराई से कर सकते हैं, यहाँ वो सब है, ये आवेश नहीं है। यद्यपि आवेश इसके साथ में होता है, जैसा कि जो मैंने कहा, धूम्रपान और मदपान पाप नहीं है, ये पाप के फल हैं। ये दर्शाता है कि आप विश्वास नहीं करते, समझे। परंतु जब आप सच में अपने हृदय में विश्वास करते हैं और आप जानते हैं कि इस आधार पर जहां आप बैठे हैं, आप अपने पूर्ण हृदय के साथ इसे स्वीकार करते हैं, ठीक वहां कुछ घटित होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, तब आप एक गवाह के समान खड़े हो सकते हैं इसके लिए कि कुछ घटित हुआ है। तब पानी के पास जाते हैं, कहते हैं मैं भक्त मंडली को दिखाना चाहता हूँ, मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं अपनी गवाही को स्थिर करना चाहता हूँ कि मैं अपना स्थान दुल्हन के साथ लूंगा, मैं यहाँ अब बपतिस्मा लेने के लिए खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत सही स्त्रियाँ यहाँ आज इस संसार में हैं, अच्छी स्त्रियाँ, परंतु मैं एक अकेली को देखकर विस्मित हूँ, और वहाँ वो उनमें से एक है और वो मेरी पत्नी, वो मेरे साथ घर जाती है। वो आरंभ से मेरी पत्नी नहीं थी, परंतु वो कैसे मेरी पत्नी बन गई, उसने मेरा नाम ले लिया। वो आ रहा है, वहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ कलीसियाएं हैं इस संसार में, परंतु वो अपनी पत्नी के लिए आ रहा है, वो उसके नाम से पुकारी जाती है, वे जो मसीह में हैं, परमेश्वर उन्हें उसके साथ ले आएगा। हम उसमें कैसे आते हैं? एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने उस देह में बपतिस्मा लिया। अब जबकि हम प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करें। भीतर या बाहर, वहाँ लोगों का एक बड़ा झुंड बाहर कमरों में है, वहाँ बाहर चारों ओर सड़क पर खड़े हैं। परंतु अब जबकि आप, हम आपको यहाँ वेदी पर नहीं बुला सकते, परंतु आपका हृदय इसे वेदी बना ले। ठीक है, अपने हृदय में कहें, प्रभु यीशु, मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं यहाँ आज रात्रि हवा में खड़ा हूँ, मैं यहाँ इस छोटे कमरे में शांत हूँ, मैं यहाँ इन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता, मैं इसमें चूक नहीं सकता, मैं ये सहन नहीं कर सकता। हर चीज जो मैंने आपको बीती रात में बताई, मेरी इतनी सहायता की। प्रभु, जानता हूँ कि मैंने सत्य बताया है, मैं झूठ नहीं बोलता। जैसा पौलुस ने कहा, वो दर्शन या वो जो भी था, मैंने वहाँ खड़े हुए देखा और उन लोगों से व्यवहार किया जो चले गए, बिल्कुल वैसे ही वास्तविक जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसमें ना चूकें, मेरे बेचारे भाई या बहन, ये ना करें। मैं जानता हूँ कि आपने प्रचार सुन लिया है, आपने ये वो और कहानियाँ ये सब, परंतु जरा सुनिए, मेरे लिए ये है, मैं जानता हूँ कि ये सत्य है। देखिए आप, बस मैं इसे अधिक स्पष्ट नहीं कर सकता। देखिए, इसमें चूकिए नहीं, ये सब आपका है। अब आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, यहाँ मेरे सामने रुमालों का एक बॉक्स है जो बीमारों को दिखाता है। जैसा कि मैं इन पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ, जैसा कि बाइबल ने कहा, उन्होंने पौलुस की देह से छुआ कर लिया रुमालों और कपड़ों को, लोगों में से प्रेत आत्माएं निकल गईं और एक महान चिन्ह किया गया था, क्योंकि उन्होंने पौलुस को देखा था कि वे जानते थे कि परमेश्वर का आत्मा उसमें था। वे जानते थे कि वो था, वो एक विचित्र मनुष्य था। वे बातें जिसके विषय में उसने बातें की, वचन के विषय में, वो इब्रानी कलीसिया के पुराने इब्रानी वचन को जाकर लेगा और इसे जीवन में लाएगा और इसे मसीह में रखेगा। वे जानते थे कि परमेश्वर इस मनुष्य में था। तब उन्होंने देखा कि परमेश्वर विचित्र कार्य और सामर्थ्य कार्य उसके द्वारा करता है, आने वाली चीजें बताता है, और ये उसी प्रकार से होगी। और उन्हें मालूम था कि वो परमेश्वर का दास था। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों में जो आदर वचन के लिए है, आप आदर करेंगे और उन्हें यीशु के कारण चंगा करेंगे। यहाँ प्रभु भक्त मंडली में लोग बैठे हैं, जैसा कि ये इन्होंने पेंतिकुस्त के दिन पर प्रेरित पत्रस को सुना, कैसे वो वचन में वापस गया और वचन को लिया, और उसने कहा, योएल ने कहा, अंत के दिनों में ये चीजें घटित होंगी, और वो ये हैं, और 3,000 लोगों ने इसका विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। और पिता, आज हम यहाँ आपके अनुग्रह के द्वारा खड़े हैं, और ये इसलिए नहीं कि ये विशेष लोग हैं, परंतु क्योंकि ये दिन सिंह के दिनों के समान है, या बैल या मनुष्य, ये उकाब का समय है, ये इस घड़ी का अभिषेक है, ये वो समय है जिसमें हम रह रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का कार्य इस विशेष समय के लिए है, ये सिद्ध करने के लिए कि यीशु मरा हुआ नहीं है। वे बातें जो उसने कही, वो इन चीजों को करेगा इससे पहले कि सांझ का उजियाला चला जाए। और यहाँ हम उसे करते हुए देखते हैं, ठीक यहाँ मार्ग के साथ हमने इसे विज्ञान खोज में आते हुए देखा और उसका चित्र लिया गया था, वो महान अग्नि स्तंभ जिसने इजरायली बालकों की अगुवाई की, जो पौलुस को मार्ग में मिला था। और हम जानते हैं कि यही अग्नि स्तंभ जिसने मूसा की जंगल में अगुवाई की, उसी अग्नि स्तंभ के द्वारा उसने बाइबल की बहुत सी पुस्तकें लिखी, क्योंकि वो वचन से अभिषेक था। वही अग्नि स्तंभ पौलुस पर दमिश्की मार्ग पर आया, उसने बाइबल की बहुत सी पुस्तकें लिखी जो परमेश्वर का वचन कहलाई। और अब प्रभु, वही अग्नि स्तंभ गवाही के वचन का प्रमाण और वैज्ञानिक खोज के द्वारा हम यहाँ प्रभु के वचन को प्रकट करते हुए देखते हैं। परमेश्वर, लोग जल्द ही जाग जाएं, प्रभु जल्दी से, वे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जब ये उनके मार्ग में चमक रहा है, ये देख पाएं उस छोटी कुख्यात स्त्री के समान जो उस दिन कुएं पर थी। उसने तुरंत ही पहचान लिया और वो जान गई कि ये वचन था। और अब पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ वे सब जो इस समय आपको अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, इस घड़ी में सदा के लिए तय कर लेंगे कि वे पाप से अलग हो गए, वे उठेंगे और तैयारी करेंगे कि लोगों के सामने मान लें यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा उनके पापों के छुटकारे के लिए, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने विश्वास किया है कि परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया है और वे यीशु मसीह के नाम को लेते हैं। तब पिता पवित्र आत्मा का तेल उन पर उंडेल दे ताकि वे प्रभु परमेश्वर की सेवकाई में रखे जा सकें, ताकि वे इस अंत के बुरे दिन में उसके सेवक सकें, क्योंकि हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे पास समय कम है और कलीसिया किसी भी समय जा सकती है। मेमना वहाँ किसी भी समय पवित्र स्थान को छोड़ सकता है या बलिदान का सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से आ जाता है जहाँ बलिदान रखा है और फिर ये पूरा हो गया, फिर संसार के लिए कोई आशा नहीं, वो समाप्त हो गया। तब वो परेशानी में चला जाता है भूचालों के महान ऐंठनों में और महान झटकों में जैसे ये पुनरुत्थान में था और जैसे मसीह कब्र में से उठा, जब संत लोग उठे वही चीज घटित होगी। प्रभु ये किसी भी मिनट में हो सकता है, हम उस प्रसन्नता के दिन आने की राह देख रहे हैं। पिता अब अपने छोटे बालकों को अपनी गोद में उठा लें, अपने छोटे मेमने को अपनी गोद में इसे प्रदान करें और उन्हें वचन खिलाएं जब तक कि उन्हें सेवा के लिए सामर्थ मिले। हम इन्हें आपको समर्पित करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना का उत्तर दें। पिता आपने मरकुस 11वें अध्याय में कहा है, जब तुम प्रार्थना करते हो खड़े हुए प्रार्थना, विश्वास कर लो जो तुमने मांगा है पा लिया है और तुम्हें मिल जाएगा, और अपने पूरे हृदय से उसको जो इन वर्षों में होते हुए इन बातों को प्रकट कर रहा है और ये मोहरे यहाँ इन अंतिम सप्ताह में, मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु परमेश्वर कि यही घड़ी है, अब समीप है और जितना हम वास्तव में सोचते हैं आपकी पहुंच से उससे अधिक समीप है। कृपया मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए और होने पाए परमेश्वर का हर बुलाया हुआ बालक जो यहाँ दूर से सुन रहा है या फिर टेप उस समय प्रभावित हो, मैं उनका परमेश्वर के राज्य के लिए दावा करता हूँ इस आधार पर कि ये जानते हुए यही वचन है जो कि प्रकट किया जा रहा था। सांझ के उजियाले को चमकने दो पिता, मैं इन्हें आपको समर्पित करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। अब वे सब जो भीतर या बाहर हैं, जो विश्वास करते हैं और कभी लोगों के समक्ष नहीं माना कि आपका पाप से कोई मतलब नहीं और आप परमेश्वर की दया को चाहते हैं और आपने उन्हें यीशु मसीह में मान लिया है, तो तालाब वे किसी को भी जो बपतिस्मा लेना चाहेगा देने को तैयार हैं। आज या कल, ठीक अभी या जब कभी ये हो सकता है। क्या आपने छठवीं मोहर का आनंद लिया? आप देखिए ये अब कहाँ खुली है, क्या आपने इसका विश्वास कर लिया? ये कहा गया, किसने हमारे समाचार का विश्वास किया और किस पर परमेश्वर का भुजबल प्रकट हुआ? समाचार का विश्वास करें, तब प्रभु की भुजा प्रकट हुई, भुजा वचन परमेश्वर का प्रकट हुआ। अब प्रभु ने चाहा तो कल प्रातः मैं अपने पूरे यत्न से इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, संभवतः मैं बाकी रात्रि इस पर लगाऊंगा और या अधिकांश इस पर। उन पर प्रार्थना करने के लिए मुझे एक रात्रि में लगभग 1 से 3 घंटे मिल रहे हैं। पिछली रात्रि मैं जब तक 1 नहीं बज गया पलंग पर कभी नहीं जा पाया और 3 बजे से मैं अध्ययन में हूँ, समझे। मैं इसके लिए उत्तर देने जा रहा हूँ, ये ठीक बात है, हम किसी भी चीज के बहुत समीप हैं, किसी मूर्खता या किसी दावे या आधे कच्चे विश्वास के। मुझे पहले ये देखना होगा और फिर जब मैं इसे देखता हूँ इसे वचन में भी होना चाहिए, और अब तक परमेश्वर के अनुग्रह से ये बिल्कुल सिद्ध है। मैंने इन्हें इसे हर ओर से लिया है, आप ये जानते हैं, और ये एक साथ जुड़े हुए हैं। इसे यहोवा यूं कहता है होना चाहिए, क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं जैसा कहता है, ये मुझसे है, जानता हूँ मैं अपने से, परंतु प्रभु का वचन यहोवा यूं कहता है, और यहाँ वचन है, वही ले रहा हूँ जो उसने मुझे दिया है और इसे साथ मिलाकर और आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ये आप अपने से जानते हैं ये यहोवा यूं कहता है, समझे। यह वचन ऐसा कहता है और फिर वो प्रकाशन जो वो मुझे देता है, जो कि उस बात से भिन्न है जो कि हम में से किसी ने कभी सोचा क्यों? जो मैंने सोचा उससे भिन्न, क्योंकि मैं इसमें कभी भी इस प्रकार से नहीं गया। परंतु अब हम पाते हैं ये एक दूसरे में बैठ जाता है, और ये क्या है? ये यहोवा यूं कहता है, समझे? ये बिल्कुल सही है। ये वो खुला हुआ स्थान है जो वहाँ थामे है इस घड़ी के लिए, और तब प्रभु आता है और इसे इस प्रकार से आगे बढ़ाता है। इसलिए आप देखिए, ये वहाँ पर है, ये प्रभु है। ओ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे अपने पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ। अब स्मरण रखें आप, हम वेदी पर नहीं ले सकते, बहुतों ने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। अब देखिए, ये एक व्यक्तिगत मामला है आपके साथ, ये जो भी आप करना चाहते हैं, समझे? घड़ी बहुत ही समीप है, जितने यत्न से आप कोशिश कर सकते हैं करें, ना कि पीछे को हो जाएं। देखिए, बस जोर लगाएं कि अंदर जाने का यत्न करें। प्रभु, मैं बाहर ना रहूं, मुझे बाहर ना छोड़ दे प्रभु, द्वार बंद हो रहे हैं, यदि मैं भीतर जा सकूं, समझे? एक दिन परमेश्वर द्वार बंद कर देगा। उसने ये नूह के दिनों में किया और उन्होंने द्वार खटखटाया। क्या ये ठीक बात है? अब याद रखें, बाइबल ने कहा कि सातवें घंटे में, ये ठीक बात है? कुछ पहले घंटे में सो गईं, कुछ दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, परंतु सातवें घंटे में एक घोषणा हुई, शोर हुआ, दूल्हा आता है, उससे मिलने को बाहर निकलो। सोने वाली कुंवारियों ने कहा, कहती हैं, अब मैं उस तेल में से कुछ लेना चाहूंगी। दुल्हन ने कहा, मेरे पास तो केवल मेरे लिए ही है, बस इतना ही पर्याप्त है। यदि तुम ये चाहती हो, तुम जाओ और प्रार्थना करो। क्या आप अब सोने वाली कुंवारियों को नहीं देखते? उन एपिस्कोपलियन, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन को देखिए, और हर चीज यत्न कर रही है कि, और इसकी परेशानी ये है, बजाय इसके कि पवित्र आत्मा पाने की कोशिश करें, वो अन्य भाषाओं में बोलने का यत्न कर रहे हैं, और उनमें से बहुत से अन्य भाषा बोलते हैं, और इस कलीसिया में आकर प्रार्थना करवाने के लिए ले जाते हैं, और मुझसे चाहते हैं कि मैं उनके घर आकर उनके लिए प्रार्थना करूं। तुम इसे पवित्र आत्मा कहते हो? ये अन्य भाषा में बोलना है, परंतु पवित्र आत्मा नहीं है, समझे? अब मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा अन्य भाषाओं में बात करता है। अब जानते हैं, मैं ये विश्वास करता हूं। देखिए, परंतु इसमें भी जालसाजी है। जी हां श्रीमान, आत्मा के फल जो कि सिद्ध करता है कि ये क्या है। पेड़ के फल सिद्ध करते हैं कि ये किस प्रकार का पेड़ है, ना कि छाल, फल। अब ध्यान दें, तब जब वो आती है, वो अंतिम घड़ी, और वहाँ जब वे अंदर आते हैं, तब वे गए और बोले, भाई मैं विश्वास करता हूँ, अब ये मुझे मिल गया, मुझे विश्वास है, मुझे ये मिल गया। जी हाँ, हम इसे ले रहे हैं। अच्छा हो कि मैं ये ना कहूँ, देखिए, ये भ्रम का कारण हो सकता है। जब मैंने उस दिन कहा था कि उठा लिया जाना, ये कैसे आएगा? मैं यदि आप कहते हैं कि आप इसे लेंगे, ठीक है, ध्यान दें, ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है।
When the sleeping virgin, see, that thought she was prayed up to come back.
देखिए, जब सोने वाली कुंवारी, जिसने सोचा, उस पर प्रार्थना हो गई थी कि वापस आए, दुल्हन जा चुकी थी, ये चली गई, और उसे ये नहीं मालूम, जैसे कि एक चोर मध्य रात्रि में, तब उन्होंने दरवाजे पीटने शुरू कर दिए, और क्या घटित हुआ? क्या हुआ? वे पीड़ा के काल में डाल दिए गए। बाइबल ने कहा, वहाँ रोना, बिलखना और दांतों का पीसना होगा। क्या ये ठीक बात है? ये कब होने जा रहा है भाई? बहन, मैं नहीं जानता, परंतु मैं, मुझे ये हो सकता है, मैं यहाँ हूँ। अब देखिए, यही है जो, ये मेरा विचार है, समझे? मैं विश्वास करता हूँ, ये इतने समीप है, मैं प्रतिदिन चाहता हूँ, मैं बस बहुत ही नम्रता के साथ जितना मैं चल सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ, समझे? और जब आप जानते हैं, जब आज कुछ घटित हुआ और मैंने किसी चीज को आते देखा, मैं अधिक सांस नहीं ले सका। देखिए, वो वहाँ पर खड़ा था और यहाँ ये था, मैं जानता हूँ कि ये सत्य है। मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता, मैं बस कमरे से बाहर निकल गया, इधर उधर टहलता रहा। भाई, मैंने सोचा, ओ प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ, ओ समझे? और मुझे मछली पकड़ने जाना है या कुछ और, या मैं, लड़के, आप काश, आप, मैं आपको नहीं बता सकता, समझे? हमारे पास एक अच्छा समय है, क्या हमारे पास नहीं है? प्रभु की महिमा हो, आमीन, समझे? हम एक जबरदस्त समय में हैं। देखिए, क्योंकि मेरा हृदय प्रसन्नता और आनंद से उछल रहा है। परंतु जब मैं इस संसार के विषय में सोचता हूँ, और हजारों जो मैं जानता हूँ जो नष्ट हो गए, काली छाया से ग्रस्त हैं, तब आपका हृदय बस रोता है। आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसा अनुभव करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में रो रहा है, जैसे कि ये हमारे प्रभु में रोया होगा, जब उसने यरूशलम को देखा, अपने ही लोगों को, देखिए, कहा, यरूशलम, यरूशलम, मैंने कितना चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छिपा लेती है, परंतु तुमने नहीं चाहा। आप ऐसा अनुभव करते हैं? पवित्र आत्मा कहता है, मैंने कितना चाहा कि मैं तुम्हें जमा कर लेता, देखिए, परंतु तुमने नहीं चाहा। समझे? हम लोग ठीक यहाँ किसी चीज पर हैं, मित्रों। ये जो भी है परमेश्वर जानता है। कोई नहीं जानता कि ये कब होने जा रहा है। ये गुप्त है। कोई नहीं जानता ये कब होने जा रहा है, परंतु यीशु ने हमें बताया, जब तुम इन बातों को होते देखो, ये सारी चीजें ठीक उसी प्रकार से जो मैंने छठवीं मोहर के साथ तुलना की, उससे जो उसने मत्ती 24 में कहा। अब इसमें रखें कि उसने क्या कहा, जब तुम इन बातों को होते देखो, तब समय द्वार पर है। ठीक अगले पद पर ध्यान करें, 30वें और 31वें पर, जैसा कि 32वें और 33वें पदों को, उसने कहा, वो अपने दूतों को भेजेगा आकाश के चारों कोनों पर, उन चारों हवाओं की अपने चुनुओं को एकत्र कर ले। क्या ये ठीक बात है? कहा, अब एक सीखें, अब याद रखें, वो वहीं रुक गया। वो कभी भी छठवीं मोहर के आगे नहीं गया। उसने कभी भी सातवीं के लिए नहीं कहा। उसने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठवीं के लिए कहा, परंतु वो वहाँ रुक गया और इसके विषय में कभी कुछ नहीं कहा। अगली बात को देखिए, उसने कहा, अब एक दृष्टांत सीखो। समझे? तब वो दृष्टांत पर आरंभ हो गया। उसने कहा, ये बातें होंगी। वो उन्हें तीन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, ये चिन्ह क्या होंगे और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा, और छठवीं, यहाँ संसार का अंत है, और सातवें दूत का शब्द देना, हाथों को उठाए और जो सदा सदा तक जीवित है उसकी शपथ खाकर कहा कि समय और ना होगा। पृथ्वी नई वाली को जन्म दे रही है, ये हो गया और हम यहाँ पर हैं, ठीक यहाँ द्वार पर हैं हम। ओ, मैं कांपता हूँ। ओ, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, मैं और क्या कर सकता हूँ? समझे? और तब बस सोचता हूँ, उस स्थान और उन बहुमूल्य लोगों को देखते हुए, मैं वहाँ खड़ा हुआ अपने आप को देख रहा था और मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, क्यों वे इसमें चूक नहीं सकते? मैं मुझे उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे उन सुनने वालों में पहुंचना चाहिए, उन्हें ले लूं और धक्का दूं। आप ये नहीं कर सकते, आप और कोई मनुष्य नहीं आ सकता सिवाय कि मेरा पिता उसे खींच न ले। परंतु यहाँ हमारे पास एक सांत्वना है, सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। परंतु बाकी वे उन संस्थाओं के संग इस प्रकार से, ये उन पर निर्भर करता है, देखिए। और उसने वे सारे जो जीवित पृथ्वी पर रहते थे उनको धोखा दिया, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं थे, जो कि जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया था। ओ प्रभु, इसलिए आप देखते हैं कि ये दुख भरी बात है। आप केवल एक ही कार्य कर सकते हैं कि केवल 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 वचन के साथ स्थिर रहें, ध्यान दें, वो जो भी कहता है वही करें और फिर वही करें। समझे? जो भी वो कहता है करें, वही करें, और आप वही देखें और कहें, ओह प्रभु, वे ये करते हैं, तब ओ, ये बस, आप इस बात का अनुभव नहीं करते कि कितना अधिक भार पड़ता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि टेप बंद है। बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई ब्रैनम इस प्रकार की सेवकाई के साथ, मैंने देखा है, क्योंकि लोग इन टेपों को लेकर उसमें से कुछ टुकड़ों को ले लेते हैं, आप जानते हैं। इसलिए जब वे कहते हैं, भाई ब्रैनम इच्छा है कि हमारे पास ये सेवकाई थी, आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं, आप ईमानदार, आप नहीं जानते कि इसके साथ क्या चलता है, भाई बहन, ओ प्रभु। और जवाबदेही, जब लोग आप जो कहते हैं उस पर टिकते हैं, स्मरण रखें, यदि आप उन्हें गलत बताते हैं तो परमेश्वर उनके लहू का हिसाब आपसे लेगा। तब आप इस पर सोचें, ये भयानक बात है। इसलिए प्रेम से भरे रहें, यीशु को अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करें, बस अनुकरण, सादगी से रहें, कभी भी किसी चीज को आकार देने का यत्न न करें, बस परमेश्वर के सन्मुख सादगी में रहें, क्योंकि जितना आप एक आकार देने का यत्न करेंगे आप उतने ही उससे दूर हो जाएंगे। समझे? बस सादगी में उस पर विश्वास करें। कहते हैं, अब अच्छा, वो कब आएगा? यदि वो आज आता है ठीक है, यदि वो आज से 20 वर्ष बाद आता है ये तब भी ठीक है, मैं वैसे ही चलता रहूंगा जैसे मैं आज चल रहा हूँ, उसका अनुकरण करते हुए। प्रभु, यदि आप मुझे कहीं प्रयोग कर सकते हैं तो प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। यदि आज से ये 100 वर्षों में है, यदि मेरे पोते के पोते के पोते के पोते उसके आगमन को देखने के लिए जीते हैं, तो प्रभु मैं नहीं जानता ये कब होने जा रहा है, परंतु मैं आज बस आपके साथ सही चलने पाऊँ। समझे? मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस दिन उठ खड़ा हूँगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने कहीं एक हल्की सी झपकी ली हो। वहाँ सामने उस महिमामय स्थान पर आ रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य वहाँ है, जहाँ सारे बूढ़े जवान हो जाएंगे, जहाँ वे पहले ही श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, वे पुरुष और स्त्रियाँ बदल गए हैं, एक बहुत ही सुंदर पुरुष के समान और एक प्यारी महिला वहाँ अपनी सारी सुंदरता और एक युवा महिला के कद में और एक युवा मनुष्य वहाँ खड़ा हुआ है और कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकेगा, कभी भी पापी नहीं हो सकता, कभी कोई भी चीज द्वेष या घृणा या कोई भी चीज। ओ प्रभु, मैं सोचता हूँ कि अब टेप बंद है और मेरे पास लगभग 2 या 3 मिनट और हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? अब ये व्यक्तिगत है, देखिए, क्योंकि कल मैं ये बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि अच्छा हो कि मैं इसे अब कहूँ। देखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं अब ये बस हमारे लिए है। मैं जरा, आप जानते हैं मेरी पत्नी है जिसको मैं प्रेम करता हूँ और वो मैडा है, और मैंने उसे विवाह भी नहीं किया था अपनी पहली पत्नी के प्रेम के कारण, और फिर भी मैंने उसकी जितनी देखभाल की, मैंने उसे विवाह नहीं किया होता यदि परमेश्वर ने मुझसे ये करने के लिए ना कहा होता। और आप इस कहानी को जानते हैं कि कैसे वो प्रार्थना के लिए गई और मैंने कैसे किया, और तब उसने मुझे ठीक ठीक बताया कि क्या करना है और जा उससे विवाह कर और इसे करने के लिए सही समय। वो एक सुंदर स्त्री है और आज वो रात्रि मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, और इसलिए अब ये घर पर 8 बजे हैं, संभवतः वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। अब ध्यान दें, एक दिन उसने मुझसे कहा था, उसने कहा, बिल, मैं तुमसे स्वर्ग के विषय में एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है मैडम। वो क्या है? उसने कहा, आपको मालूम है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। और मैंने कहा, हाँ। और ठीक इसके बाद जब वे थे, यहाँ हुआ। उसने कहा, आप जानते हैं होप ने भी आपसे प्रेम किया। मैंने कहा, हाँ। और उसने कहा मैं नहीं सोचती कि मैं ईर्ष्या करूंगी। उसने कहा, परंतु होप थी। और उसने कहा, अब जब हम स्वर्ग को जाएंगे, और आपने कहा कि आपने उसे वहाँ देखा है। मैंने कहा, हाँ, वो वहाँ है, मैंने उसे देखा, मैंने उसे वहाँ 2 बार देखा, वो वहाँ पर है, वो वहाँ मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे ही शेरोन मैंने देखा, ठीक ऐसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैंने उसे वहाँ देखा। और मैंने कहा, उसने कहा, अच्छा अब जब हम वहाँ पहुँचते हैं, कहा, तुम्हारी पत्नी कौन सी होगी? मैंने कहा, तुम दोनों वहाँ कोई भी नहीं, देखिए फिर भी आप दोनों होंगी। उसने कहा, मैं ये नहीं समझ सकी। मैंने कहा, अप्रिय बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझा दूं। मैंने कहा, अब मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम और आदर और सम्मान करता हूँ। अब उदाहरण के लिए, क्या हो यदि मैं कपड़े पहन कर जाऊँ और कोई छोटी वैश्य वास्तव में सुंदर हो, आकर अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाले और कहे, ओ भाई ब्रणम, निश्चय मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और अपने हाथ मेरे चारों ओर डालकर मुझे गले लगाए, तुम क्या सोचोगी? उसने कहा, मैं नहीं सोचती कि ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप तुम किससे अधिक प्रेम करती हो, यदि इसका प्रदर्शन हो, मुझे या प्रभु येशु को? अब ये एक परिवार में बातें चल रही हैं। और उसने कहा, प्रभु येशु को। कहा, हाँ बिल, जितना मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, परंतु इसके पहले कि मैं उसे छोड़ दूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने कहा, धन्यवाद प्रिय, मैं तुमसे यही सुनकर आनंदित हूँ जो अब। मैंने कहा, क्या हो यदि वही छोटी स्त्री येशु के पास आकर अपनी बाहें उसके चारों ओर डाले कहे, येशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तुम इस विषय में क्या सोचोगी? उसने कहा, मैं इसमें आनंदित होंगी। देखिए, ये शारीरिक से आत्मिक में बदलता है। देखिए, ये ऊंचे दर्जे का प्रेम है, समझे? और वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे पति और पत्नी, जैसे कि बच्चे पालना, ये सब चला गया। वो स्त्री और पुरुष लिंग की वे ग्रंथियाँ सारी, वे सब कुछ एक से हैं वहाँ पर, समझे? वहाँ ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। देखिए, वहाँ कामुकता वाली ग्रंथियाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं, समझे? आप बस, जी हाँ, जरा अपने आप को बिना कामुकता वाली ग्रंथि के साथ सोचें। ये हम में इसलिए है कि हम पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ाएं। अब देखिए, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ ना पुरुष ना स्त्री ही, ना स्त्री वाली ग्रंथियाँ हैं, नहीं। परंतु परमेश्वर ने जो रूप आकार बनाए हैं, वो वहाँ होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु हम वहाँ पर सच्चे वास्तविक होंगे, कोई शारीरिक नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ईश्वरीय, समझे? इसलिए पत्नी एक प्रियसी से और कुछ अधिक नहीं होगी जो कि आपकी है, और वो आप एक दूसरे से संबंधित हैं। वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होगी जैसे एक, नहीं नहीं, यहाँ तक कि वहाँ होगा ही नहीं। देखिए, यहाँ तक कि शारीरिक भाग वहाँ बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ द्वेष जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, कुछ नहीं द्वेष के लिए, वहाँ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आप कभी भी इस प्रकार की चीज नहीं पा सकेंगे, समझे? बस एक सुंदर युवा पुरुष और युवा स्त्री जीने के लिए। और तब इसके बाद उसने कहा, बिल, अब मैं ये देखती हूँ। मैंने कहा, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी चीज घटित हुई। ये एक स्वप्न था, मैं सोया हुआ था और मैंने इसे पहले कभी लोगों के सामने नहीं बताया। मैंने ये दो चार लोगों को बताया, लेकिन लोगों के सामने इसके पहले कभी नहीं बताया, जैसा कि मैं जानता हूँ। मैंने इसके लगभग एक महीने बाद ये स्वप्न देखा कि मैं खड़ा हुआ था एक दिन और मैं एक महान समय को देख रहा था कि न्याय को नहीं। अब मैं विश्वास नहीं करता कि ये कलीसिया कभी न्याय में जाएगी, परंतु मैं वहाँ था जब ताज दिए जा रहे थे, देखिए, और एक महान महान बड़ा सिंहासन यहाँ रखा है और यीशु और अभिलेख स्वर्गदूत और सारे वहाँ खड़े थे और वहाँ सीढ़ी के पायदान इस प्रकार से नीचे एक और जा रहे थे, सफेद हाथी दांत के एक बड़ा नीला विशाल दर्शी जैसा इस प्रकार, और आगे बढ़ गया ताकि सारा महान जमघट वहाँ खड़ा होकर देख सके कि क्या घटित हो रहा है। और मैं वहाँ पीछे खड़ा हुआ हूँगा, वहाँ पीछे एक और मैं वहाँ बस खड़ा था। कभी कोई विचार नहीं कि मुझे उन पायदानों पर चढ़ना है। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैं देखूंगा, अभिलेख वाला सरदूत कुछ विशेष नाम पुकारेगा और मैं जान जाऊंगा, उस नाम को पहचानता हूँ। मैंने देखा कि वहाँ पीछे यहाँ एक भाई एक बहन के साथ चलता हुआ आता है, इस प्रकार से आपके पास तक आता है। वो अभिलेख वाला सरदूत वहाँ मसीह के एक और खड़ा है। अब ये एक स्वप्न है और मैं देख रहा हूँ और उनके नाम वहाँ उस पर थे, ये जीवन की पुस्तक में पाए गए थे। वो उनकी ओर देखता है और कहता है, ये था, ये बहुत अच्छा किया था मेरे अच्छे और ईमानदार दास, अब अंदर आ। मैंने पीछे मुड़कर देखा जहाँ वे जा रहे थे, वहाँ एक नया संसार और आनंद था, और कहा, प्रभु के आनंद में भीतर आ जा, ये तुम्हारे लिए संसार की नींव रखने से पहले है, समझे? और ओ, मैंने सोचा वे इसमें जाएंगे और एक दूसरे से मिल रहे हैं और बस आनंद कर रहे हैं और पहाड़ों पर जा रहे हैं और महान बड़ा स्थान, परंतु मैंने सोचा, ओ क्या ये आश्चर्यजनक नहीं, महिमा हो, हालेलुया, ऊपर नीचे कूद रहे हैं। और तब मैंने एक और नाम को पुकारे जाने सुनता हूँ। मैं सोचता हूँ, ओ मैं उसे जानता हूँ, मैं वहाँ वो जाता है, उसको इस प्रकार से देखता हूँ, प्रभु के आनंद में आ जा मेरे अच्छे, और ओ मैं कहूँगा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। उदाहरण के लिए कहते हैं, जैसे वे कहते हैं, ऑर्मन नेविल, देखिए, और तब मैं कहूँगा, ये बूढ़ा भाई नेविल, वो ये रहा, समझे? और वो वहाँ आता है, भीड़ में से निकलकर ऊपर जाता है। अब वो कहता है, प्रभु के आनंदों में प्रवेश करो, ये तुम्हारे लिए संसार के रचने से पहले तैयार किया गया है, प्रवेश करो। और बूढ़े भाई नेविल बस बदल गए और पीछे से चलना आरंभ किया, बस चिल्ला और शोर मचा रहे हैं। लड़के, मैं बस चिल्लाता और कहता हूँ, परमेश्वर की महिमा हो, यहाँ मैं अपने में खड़ा हूँ, बहुत ही शानदार समय, अपने भाइयों को अंदर जाते हुए देख रहा हूँ। और अभिलेख वाला सरदूत वहाँ खड़ा है और कहा, विलियम ब्रनम, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे वहाँ चलना होगा, इसलिए तब मैं डर गया। मैंने सोचा, ओ प्रभु, क्या मुझे ये करना होगा? इसलिए मैं चलता हुआ वहाँ गया और बस सब मेरी पीठ थपथपा रहे थे, वो हे भाई ब्रनम, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई ब्रनम। और जब तक लोगों की बड़ी भीड़ से निकलकर लोग इस प्रकार से थपथपा रहे और सब लोग बढ़कर मुझे इस प्रकार से थपथपा रहे थे, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, मैं जा रहा था। मैंने कहा, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, आपको धन्यवाद, जैसे सभा से बाहर निकलते हुए या कुछ, आप जानते हैं। और मैं इन बड़ी अच्छी सीढ़ियों पर चलने वाला ही था, मैंने वहाँ से चलना आरंभ कर दिया और बस जैसे ही मैंने अपना पहला कदम उठाया, मैं रुक गया और मैंने सोचा, मैंने उसके मुख की ओर देखा, मैंने सोचा, मैं उसको अच्छी तरह से इस प्रकार देखना चाहता था और मैं रुक गया। मेरे अपने हाथ इस प्रकार से थे, मैंने अनुभव किया, यहाँ मेरे हाथ पर कोई चीज आई और ये और किसी का हाथ था। मैंने घूम कर देखा और वहाँ होप खड़ी थी, वे बड़ी काली आँखें और काले बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे, सफेद कपड़े पहने हुए, और मुझे इस प्रकार से देख रही थी। मैंने कहा, होप, मैंने अनुभव किया कोई चीज मेरे इस हाथ में लगी, घूम कर देखा और वहाँ मेडा थी, वे काली आँखें देख रही थी और वे काले बाल लटक रहे थे, एक सफेद वस्त्र पहने हुए, और मैंने कहा, मेडा, और उन्होंने एक दूसरे को देखा, आप जानते हैं इस प्रकार से वे, मैं उन्हें अपनी बाहों में लिया और यहाँ हम नए घर जा रहे हैं। मैं जाग गया, ओ मैं जाग गया और मैं उठकर कुर्सी पर बैठ गया और रोया। अब जानते हैं, मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, मैं आशा करता हूँ ये इसी प्रकार आएगा, जीवन में दोनों मेरे से जुड़ी रहीं और बालक उत्पन्न हुए और इस प्रकार की बातें, और यहाँ हम हैं, इस नए संसार में चल रहे हैं, ओ प्रभु, जहाँ सिद्धता और हर चीज है, नहीं कुछ नहीं, ओ ये बहुत शानदार चीज होने जा रही है, इसमें चूक ना जाएं, इसमें चूके नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह से वो सब करें जो आप कर सकते हैं, और ये परमेश्वर पर निर्भर रहेगा कि वो बाकी बातों की चिंता करे। तब मैं उसे प्रेम करता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी के वृक्ष पर। आइए इसे फिर से गाएं अपने सारे हृदय से। अब अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाएं।
मैं उससे प्रेम करता हूँ,
उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी के ठीक है। अब वो सभा के चलते जीने की आशा नहीं कर रही थी, ये ठीक बात है। यहाँ वो है, दोनों हाथ हवा में हैं, परमेश्वर की महिमा कर रही है। यही कारण है मैं यहाँ लंबे समय से रुका रहा, आपको नहीं बताया मैं क्या करता हूँ। मैं मेडा और उनके विषय में बातें कर रहा था और मैं ये देख रहा था कि देखूं क्या मैं उस ज्योति को आगे पीछे चक्कर मारते देख रहा था, और गई और उस पर जाकर ठहर गई। मैंने सोचा यही है। ओ क्या ये आश्चर्यजनक नहीं।
मैं उसे प्रेम करता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी वृक्ष पर।
अब अपने हृदयों के साथ
just think of his goodness and mercy.
उसके भलाई और अनुग्रह के विषय में जरा सोचें।
प्रेम करता हूँ,
आमीन।
उसने मुझसे पहले प्रेम किया।
अब देखिए वो कितनी अच्छी है, आमीन। यही है, अब जाइए और चंगी रहिए, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर प्रकट हुआ है कि आपको चंगा कर दे, आमीन।
कैलवरी के वृक्ष पर।
ओ परमेश्वर की महिमा हो।
मैं उससे प्रेम करता हूँ।
ठीक है आपके पास्टर। मैं 9 से 9:30 9 बजे के आसपास, आप 9 बजे आरंभ करें, मैं 9:30 बजे आरंभ करूंगा।